करारविंदे नपदारविंदो मुखारविंदे बिनु बेसयन्तम्
पत्र सकुटीशयानम् वारं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
श्रीकृष्ण गोविन्दे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवं गोविन्द दामो धर्मान्धुमेति गोविन्द दामो धर्मान्धुमेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित जीव दत्ति दद्यादिकम्बो वसादि गोचर गोविंद नामो धर्माधुवेति गृहे गृहे गो पिबधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा स्वमेवाप योगम् पुण्यानि नामानि पठयन्ति नित्यम् गोविंद नामो धर्माधुवेति गोविंद नामो धर्माधुवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामामि विष्णो प्रवदन्त मृत्या ते निश्चितं तन् मन्तां व्रजन्ति गोविंद नामो धर्माधुवेति जिह्वेश देवं भज सुन्दराणी नामामि कृष्ण स्यमनोहराणी समास्ति भक्तारक्ति विनाशनानी गोविन्द नामो धर्माधुवेति गोविन्द नामो धर्माधुवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द नामो धर्माधुवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णो दिव्ये पिबस्वा व्रतमेत देवो गोविन्द नामो धर्माधुवेति गोविन्द नामो धर्माधुवेति जिह्वे रसेज्ञे मधुरा प्रियातम् सत्यं हि तं त्वा परमं वदामि आवर्णयेत मधुराचराणि गोविन्द नामो धर्माधुवेति त्वामेव याचे मम देह दिव्ये समागते तन् दिधरेकतान्ते भक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द नामो धर्माधुवेति गोविन्द नामो धर्माधुवेति करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् पटस्पत्र सपुटेशयानम् पालं मुकुन्दं मनसा
సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్ మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపా తమహం వందే పరమానందమాధవం పరమానందమాధవం భూ వృందావన్ బిహారీ లాల్ కీ కృష్ణ కన్హయ్యా లాల్ కీ జయ జయ శ్రీ రాధే
మీరు గోపాల మీరు
గోవింద మీరు గోపాల మీరు
గోవింద మీరు గోపాల మీరు बिहारी नंद लाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है लाल मेरो
है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी नई लाल मेरो है
गोविंद
मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी नई लाल मेरो है
जय हो गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बाकी बिहारी नई लाल मेरो है
मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
कृष्ण कन्हैया लाल
की जय
बिहारी लाल की
जय श्री लाल
या नित्य की भांति भैया टिका रहने देना, इस जो जहां सेट है वो सेट रहने दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग सामूहिक संकल्प मंत्र का उच्चारण करें, एक साथ में, एक स्वर में, एक भाव में, एक आवाज में, सभी लोग बड़े भाव। मैं आपको प्रायः रोज कहता हूं, ये संकल्प मंत्र ही आपको श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल को प्रदान करने वाला है। जैसे बिना एड्रेस के पत्र जाता नहीं है, इसी प्रकार से बिना संकल्प के एक कथा हमें हजम नहीं होगी। भोजन करने के पहले भोग लगाते हैं ना, भोग लगाओगे तभी भगवान खाएंगे। संकल्प मंत्र बोलोगे तभी आप में कथा उतरेगी। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, बल होता है, इसलिए इस संकल्प को जरूर बोलें, जरूर बोलें। संकल्प के बिना कथा नहीं सुनी जाती है, न कोई धर्माचरण होता है, न कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है। संकल्प जीवन में अत्यावश्यक है, संकल्प आपका प्राण है। यदि प्राण नहीं तो हम सब हैं, संकल्प नहीं तो हम कुछ नहीं। संकल्प बहुत आवश्यक है, सभी लोग सामूहिक प्रेम से संकल्प मंत्र बोला करें। मैं प्रायः अक्षर आप लोगों से निवेदन करके कहता हूं, आइए सभी लोग सामूहिक संकल्प मंत्र को बोलें और प्रेम से बोलें। ओम तत्सद, जोर से बोला करो, ओम तत्सद,
ओम तत्सद,
द्वैतस्य
द्वैतस्य
ब्रह्मणो अह्नि,
ब्रह्मणो अह्नि,
द्वितीये
परार्धे,
श्री श्वेत वाराह कल्पे,
श्री श्वेत वाराह कल्पे,
वैवस्वात्मन्मन्तरे,
वैवस्वात्मन्मन्तरे,
अष्टाविंशतितमे,
अष्टाविंशतितमे
कलियुगे,
कलियुगे,
कली प्रथम चरणे,
कली प्रथम चरणे,
जम्बूदीपे,
जम्बूदीपे,
भारतवर्षे,
भारतवर्षे,
भरतखण्डे,
भरतखण्डे,
आर्यावर्तैक,
आर्यावर्तैक,
देशान्तरगते,
देशान्तरगते,
कीलकनाम संवत्सरे,
कीलकनाम संवत्सरे,
अपने अपने नाम का और गोत्र का उच्चारण करें। अमुक नाम नोहम,
अमुक नाम नोहम,
अमुक गोत्रोत्पन्नो हम,
अमुक गोत्रोत्पन्नो हम,
सभी बोले अद्य मासानाम,
मासानाम,
उत्तमे मासे,
उत्तमे मासे,
मार्गशीर्ष मासे,
मार्गशीर्ष मासे,
कृष्ण पक्षे,
कृष्ण पक्षे,
दशम्यां तिथौ,
दशम्यां तिथौ,
शनिवासरे,
शनिवासरे,
महाराष्ट्र प्रांते,
महाराष्ट्र प्रांते,
मुंबई नगर्या,
मुंबई नगर्या,
श्री प्रेमपुरी आश्रमे,
श्री प्रेमपुरी आश्रमे,
श्रीमद्भागवत सप्ताह,
श्रीमद्भागवत सप्ताह,
श्रवणार्थम,
श्रवणार्थम,
पंचम दिवसे,
पंचम दिवसे,
द्वितीय उपस्थितौ,
द्वितीय उपस्थितौ,
विनियोगः,
विनियोगः,
अनेन,
अनेन,
श्रीमद्भागवत सप्ताह,
श्रीमद्भागवत सप्ताह,
श्रवणेन,
श्रवणेन,
माम,
माम,
धर्मः,
धर्मः,
अर्थः,
अर्थः,
कामः,
कामः,
मोक्षः,
मोक्षः,
फलानां,
फला
फलानां
प्राप्तिः
अस्तु
अस्तु
एवं च
अभीष्ट
अभीष्ट
फल
फल
सिद्धिः
भगवत कृपा
अस्तु
अस्तु
श्री
कृष्ण परमात्मा देवता
प्रियंता
प्रियंता
इति भगवान का ध्यान करते हुए भोले वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
जगन नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्री श्याम सुंदर गृहराज के पावन पुनीत पादारविंद में एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह के शुपावन अवसर पर आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में जिनकी पावन पुनीत पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवाहित हो रहा है, ऐसे ब्रह्मलीन लीला नील साक्षात शिव स्वरूप मोक्ष स्वरूप स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। श्री प्रेमपुरी आश्रम के हमारे प्रिय श्री गिरीश भाई जी, राजेश भाई जी, चमनलाल सोलंकी जी, झुंझुनवाला जी तथा अन्य समस्त कार्य कुशल कर्मठ हमारे ट्रस्टीवृंद, इस आयोजन में विशेष रूप से सक्रिय सौभाग्यवती पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की परम कृपा पात्रा माधुरी बहन तथा समस्त ढोलकिया परिवार एवं समस्त पोथियों के यजमान वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी शक्तिस्वरूपा मेरी माताओं कृष्ण रस के रसिक समस्त भक्त वृंद हमारे स्नेह के पात्र संगीतज्ञ वृंद आचार्य वृंद आश्रम का समस्त स्टाफ कर्मचारी वृंद आइए, बहुत ही पावन अवसर प्रवाहित है, आप अति पावन अति पवित्र स्थल पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत सप्ताह के आज पंचम दिवस के प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं। श्री शुकदेव जी महाराज भक्ति से ओतप्रोत परिपूर्ण अपनी पावन वाणी को श्री परीक्षित महाराज के कर्णरंध्रों के माध्यम से उनके हृदय तक इन लीलाओं को पहुंचा रहे हैं। श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक भावपूर्वक इन लीलाओं को हृदयंगम करें, श्रवण करें। परीक्षित महाराज अनुभूति कर रहे हैं जिस प्रकार से अति बुभुक्षु आदमी ज्यों ज्यों भोजन करता जाता है, ज्यों ज्यों भोजन के ग्रास को ग्रहण करता है, त्यों त्यों उसकी क्षुधा की निवृत्ति होती है। ज्यों ज्यों वो जल का पान करता है, त्यों त्यों उसकी पिपाशा शांत होती है। राजा परीक्षित ने गुरुदेव के पावन पुनीत पादारविंद में नतमस्तक होते हुए प्रार्थना की, गुरुदेव धीरे धीरे शनई शनई उत्तरोत्तर हमारे चित्त की वृत्ति में स्थैर्य आ रहा है, हमको आनंदानुभूति हो रही है। भगवान जिस दिन से मैं आपके पावन चरणों में बैठा हूं, आपके पावन पुनीत पादारविंद का संस्पर्श पाया है। हे मेरे पूज्य गुरुदेव, उस दिन से हमको आनंद में अतिरेक आ रहा है, आनंद में मेरे वृद्धि आ रही है, हमको परम सुकून की प्राप्ति हो रही है, हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है। आप भी इसी प्रकार से बैठकर भगवान के चरणों में बैठकर उस भगवान की वाणी को श्रवण करते हुए ऐसी अनुभूति कीजिए, ऐसा चिंतन कीजिए कि हम भी उसी प्रकार से जैसे राजा परीक्षित ने गुरुदेव के पावन चरणों में बैठ करके आनंदानुभूति की है, रसास्वादन करते हुए आनंद में गोते लगाए हैं, आप भी ऐसा ही अनुभव करो कि हम भी आज परीक्षित हैं, हम भी आज विष्णुरात हैं, विष्णुरात की भांति हम भी परीक्षित की भांति अपने हृदय, अपने समस्त इस इंद्रियों के माध्यम से शांगोपांग रूपेण इन समस्त चरित्रों को अपने हृदय में हृदयंगम कर रहा हूं। ऐसा भाव बनाओ, ऐसी निष्ठा बनाओ, ऐसी श्रद्धा बनाओ। संकल्प में बहुत बल होता है, संकल्प करो, निष्ठा बनाओ, आस्था बनाओ। ये आस्था ही आपको उस परम तत्व को ले जाने में सक्षम होगी, हेतु होगी। ऐसी वृत्ति बनाओ, निष्ठा बनाओ, ये निष्ठा ही व्यक्ति को उस परम तत्व को तक पहुंचाती है, ये निष्ठा ही इस व्यक्ति को ब्रह्म रूपता में परिणत कर देती है। ध्यान से सुनो, राजा परीक्षित इन पावन कथाओं को सुन रहे हैं, भगवान आपकी पावन वाणी ने इन भगवान कृष्ण के चरित्रों को सुनकर के मेरे को एक ऐसे अगाध प्रेम के भक्ति के सागर में समाहित कर दिया है और भगवान में आनंद में विभोर हो गया हूं। भगवान कृष्ण की एक एक लीला, एक एक चरित्र, एक एक शब्द आपके हृदय को बदलने वाला है। कथा को बिना श्रवण किए एक भी शब्द को नहीं जाने देना, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में, एक एक श्लोक में मुक्ति का स्वरूप छुपा हुआ है। ध्यान देना, सुखदेव ने उपदेश दिया, राजन परीक्षित ये श्रीमद् भागवत कथा कोई राजा रानी की कहानी नहीं। राजन, यदि किसी राजा रानी की कहानी होती, मैं समाधि में समाधिस्थ था, मैं समाधि में समाधिस्थ था, मैं समाधि खोल करके, यदि ये राजा रानी की कहानी होती, कोई इतिहास होता, तो मैं उसे भांचने नहीं आता। मैं समाधि में समाधिस्थ था, उस ब्रह्मानंद के रस में उसकी रसानुभूति कर रहा था। हे परीक्षित, उस समाधि को खोलकर मैं तुम्हारे पास आया हूं और जब मैं कथा आपको अब सुना रहा हूं, तो उस ब्रह्मानंद की अनुभूति से इस भगवत कथा में मुझे कम ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो रही है। हम उसी तरह उसी आनंद की अनुभूति इन हर चर्चाओं के, इस कृष्ण चर्चाओं के माध्यम से, कृष्ण चरित्रों के माध्यम से उस आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। राजन भूल से भी मैं भी आपको दोहराऊंगा सुखदेव जी के उन पावन पुनीत वाक्यों को कि कभी भी अपने मन के अंदर, कभी भी अपने विचारों के अंदर, कभी अपने भावों के अंदर ऐसा न विचार लाना कि शायद किसी राजा रानी की कहानी है, एक कहानी नहीं। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, परमहंसाम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है, ये वीतरागी विरागी अमलात्माओं की संहिता है। जो वीतरागी विरागी अमलात्मा महात्मा अवधूत शिरोमणि, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है, संसार से कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसे वीतरागी विरागी अमलात्मा योगी यति, जिसने सब कुछ छोड़ा है, ध्यान देना, जिनके तन पर वस्त्र भी नहीं है, जो वस्त्र से विहीन है, वस्त्र से रहित है, ऐसे वस्त्र विहीन श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा की व्याख्या कर रहे हैं। सुनना, ध्यान से सुनना, जिसके मन में किसी भी कोने में इत किंचित भी वासना नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी विक्षेप नहीं है, जिस प्रकार से अति शांत जल होता है, अति निर्मल जल होता है, विश्रांत जल होता है, उस शांत विश्रांत जल के अंदर आप झांकिए तो आपका सुस्पष्ट मुक्का दर्शन प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, राजन जब आपकी चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है तो आपको इन्हीं कृष्ण चरित्रों में भगवान कृष्ण का अवलोकन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, कृष्ण का अवलोकन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा। ऐसी चित्त की वृत्ति को शांत बनाओ, सौम्य बनाओ, स्थिरता लगा। परीक्षित महाराज इसी भाव से इस कथा को पुण्य श्रृला कलकल निदानी मातेश्वरी भगवती जाह्नवी के तट पर शुक्रताल वटवृक्ष के नीचे विराजमान है। कथा का प्रवाह चलते आज पंचम दिवस बीत रहा है, राजा ने अभी तक पानी नहीं पिया है, जल का ग्रहण नहीं किया है, भोजन दूर की बात, जल का पान नहीं किया है। जो भजन बढ़ता है तो भोजन घटता है, जब भोजन बढ़ता है, जब भोजन बढ़ता है तो भोग बढ़ता है, भोग से रोग बढ़ता है। भोजन जीने के लिए होता है, हम जीते रहें इसलिए भोजन है। बहुत से लोग भोजन के लिए जीते हैं, कुछ लोग भोजन के लिए जीते हैं, साधक भोजन जीने के लिए करता है। कुछ लोग भोजन करने के लिए जीते हैं और कुछ लोग भोजन करते हैं जीवन चलता रहे, बस प्राण बना रहे। भोग भोजन हमारा साध्य नहीं है, साध्य परमात्मा है, साध्य परमात्मा है, उस साध्य की ओर दृष्टि रखें। आप सोचेंगे महाराज परीक्षित जी भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, परीक्षित जल क्यों नहीं पी रहे हैं। परीक्षित महाराज समझ रहे हैं कि यदि भोजन करेंगे, ध्यान देना, भोजन करेंगे तो भोजन की तंद्रा, भोजन का आलस्य, भोजन अंदर जाएगा तो मल बनेगा, मल विक्षेप है। हम भोजन ही नहीं कर रहे, हम जल का पान ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है। परीक्षित महाराज कथा को श्रवण करते हैं, योग दर्शन में कथन आया है, विवेचन आया है कि जब आप अपनी जिह्वा को उल्टा मोड़ करके खेचरी मुद्रा में परिणत कर देते हैं तो खेचरी मुद्रा में परिणत होने पर इतना आपके अंदर ओज है, ऐसा आपके शरीर में तत्व है, वो तत्व खेचरी मुद्रा के माध्यम से आपकी जिह्वा पर टपकता है, गिरता है, जो आपको भोजन से बल मिलता है, ओज मिलता है, शक्ति मिलती, ताकत मिलती, उससे कई गुना अधिक, कई गुना अधिक आपको इस खेचरी मुद्रा पर वो आनंद मिलता है। भक्ति के शास्त्रों में बतलाया गया, भक्ति शास्त्रों में बतलाया गया है, जो भक्त साधना में संलग्न हो जाता है, प्रभु में तन्मय हो जाता है, तो तन्मय होने से उसके हृदय में एक ऐसा ओज, एक शक्ति बढ़ती है जिसके उसी भूख की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वतः उस कथा के बल से, उस भक्ति की ओज से जीता है। कितने योगी इति अमलात्मा महात्मा तंद्राओं में रहते हैं, हजारों वर्षों की समाधि लगाते हैं, सैकड़ों वर्षों की समाधि लगाते हैं और समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ अवस्था में उन्हें कौन भोजन देता है? भोजन के न लेने पर भी, भोजन के ग्रहण न करने पर भी यथावत वो श्वास लेते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, भगवान में निमग्न और तन्मय रहते हैं। उनको जीने भर का ओज, शक्ति, ताकत, बल उस भजन के द्वारा मिलता है। जीव अपने जीवन को, जीव अपने जीवन को इच्छे बिगाड़ देता है। राजन परिचित समलो, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, राजन परिचित समलो, अपने जीवन को भगवान से जोड़ दो। भगवान से जुड़ जाओगे, जो भगवान के गुण हैं, जो भगवान का वल है, जो भगवान का ओज है, वो आप में आएगा, आप तद्मय हो जाएंगे। सुनना ध्यान से, बड़ा अच्छा उपदेश है। गीता में भी ऐसा ही भगवान बोलते हैं। आप बड़े गीता के प्रेमी हैं, गीता में भगवान ने बोला, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतासनातना, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतासनातना, ममैवांस, अरे जीव तू मेरा ही तो अंश है, तू मेरा ही तो स्वरूप है। ध्यान देना, अपने को आप संसारी ना समझो। भगवान कहते तू मेरा ही तो स्वरूप है। मवई वंशो जीवलोके जीव भूषा सनातना, यही बात भागवत कह रही है। सुनना ध्यान से, इसी बात को गीता कह रहा है, इसी बात को रामायण कह रही है। ईश्वर अंश और जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, आप ईश्वर के अंश हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, गीता के आधार पर जब आप ईश्वर के अंश हैं, रामायण के आधार पर जब आप ईश्वर के अंश हैं, सुनना ध्यान से, भागवत के अनुसार जब आप ईश्वर के अंश हैं, अंश अंशी भाव है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात सुखदेव जी ने समझाई। राजन परीक्षित, सिंह से उत्पन्न जो बच्चा होता वो सिंह ही होता है, वो गीदड़ नहीं हो सकता है। राजन परीक्षित सिंह से, सिंह के द्वारा उत्पन्न, सिंहनी के द्वारा उत्पन्न जो बच्चा होता वो सिंह होता, गीदड़ कभी नहीं हो सकता है। अरे भैया, ब्रह्म से, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से निश्चित यह तत्व जीव है, वो भी तो उसका रूप हुआ है। आप भूल गए हैं, आप विस्मृत हो गए हैं, अपने स्वरूप को आप भूल चुके हैं। आप तदरूप ही तो हैं। आपको स्मरण दिलाने के लिए ये भागवत की जा रही है, आपको स्मरण कराने के नित्य स्वाध्याय कराया जा रहा है, आपको स्मरण कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कही जा रही है, रामायण सुनाई जा रही है, गीता सुनाई जा रही है, कि आपको याद आ जाए कि मेरा स्वरूप क्या है। हम दुखी क्यों हैं? हम कष्टायित क्यों हैं? अपने स्वरूप को भूल गए। अपने स्वरूप को जानिए, मेरा स्वरूप क्या है। हम नित्य हैं, हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं, हम मुक्त स्वरूप हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। राजा परीक्षित ने एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं तो सोचता था कि सांप आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे कहां डसने वाला है, मुझे अब दिन डसेगा। प्रथम दिन जो स्थिति राजा परीक्षित की थी, उसे बहुत परिवर्तन हुआ। बहुत परिवर्तन हुआ। जरा थोड़ी कथा को अपनी ओर ले जाओ। परीक्षित कह रहे हैं कि पांचवें दिन आते आते मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ है। जरा आप भी थोड़ा झांको, देखो कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो परिवर्तन लाओ। यदि आपने परिवर्तन ला दिया, ध्यान देना, यदि आपने परिवर्तन ला दिया, यदि परिवर्तन आ गया, और मुझे विश्वास आप में परिवर्तन हुआ है। यदि आप में परिवर्तन नहीं हुआ तो हुआ होता तो आप तीन तीन घंटे बिना हिले झुले बिल्कुल एक आसन पर आप नहीं बैठ सकते। यदि आप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान देना, तो मेरा आना सफल और हमारे प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा भागवत सप्ताह कराया जाना सफल, इन लोगों की मेहनत सफल, इनकी मेहनत सफल, ध्यान देना। किसी की मेहनत की कदर होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए, उसको मूल्य मिलना चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए। ट्रस्टी इतना मेहनत करते हैं, ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप सब हमारे मानस पुत्र हैं, आप हमारी मानस पुत्रियां हैं, ये मेरे प्यारे मानस पुत्रों, प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी, मेरे मानस पुत्रों, आप इतनी मेहनत करते हैं, यदि आपने अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया तो आपका प्रेमपुरी आश्रम में ट्रस्टी बनना सफल हो गया। मेहनत आपकी सफल है, सफल है, ध्यान देना। घर का किया हुआ कार्य, सुनना था मेरी बात को, घर का किया हुआ कार्य आपका पूजा नहीं है। ऑफिस में जाकर के कलम चलाना पूजा नहीं है। घर में रोटियां बना के खिला देना पूजा नहीं है। घर में झाड़ू लगा देना पूजा नहीं है। यदि आपने प्रेमपुरी आश्रम में एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा ऑफिस में बैठ करके व्यवस्था को संभाल दिया, आपने आश्रम में पथारी को ठीक कर दिया, आपने आश्रम में झाड़ू को लगा दिया, आपने आश्रम में चद्दर को बिछा दिया, यदि आपने गोवर्धन महाराज को सजा दिया, यहाँ की कोई सेवा कर दी, तो आपने तपस्या पूजा कर ली, आपकी पूजा है, पूजा 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 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव जी कह रहे। यहां पर भागवत में सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। परीक्षित यादो हने बहन ने, यादो हने बहन ने मथनो पलेप प्रेंखिंग नाबिरुदित हो क्षण मार्जना दू। अरे वो गोपियां जंगल में नहीं गई, कंदराओं में नहीं गई, गुफाओं में नहीं गई, वो घर में रही, और घर में रह करके उन्होंने क्या किया, बोले या दोहने बहन ने, उन गोपिकाओं ने जब दूध दुहा, दूध के दूते दूते भावना बनाई, एक दूध को धोकर के अपने श्याम सुंदर को सुंदर सा दूध उबालूंगी, उबालने के बाद सुंदर से गिलास में, स्वच्छ से गिलास में, पावन से गिलास में इस दूध को रखेंगे और तुलसी का पत्र डाल करके अपने बांके बिहारी श्याम सुंदर को समर्पित करूंगी। चिंतन चल रहा है, याद हो हने गायों को दूर रही है, चिंतन चल रहा है, कृष्ण का स्मरण है, दूते समय का जो चिंतन है, जो क्रिया का कृष्ण से जुड़ाव है, वो दूहने की क्रिया भक्ति बन रही है। यादो हने बहन ने हाथ में मूसल को लिया है, मूसल को लेकर गोपिकाएं धान कूट रही हैं, और धान कूटते कूटते चिंतन कर रही हैं कि हम इसमें से चावल को निकाल करके अपने नंद नंदन मुली मनोहर श्याम सुंदर लाला कन्हैया को सुंदर सी चश्मई खीर बनाऊंगी और लाला को भोग लगाऊंगी। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, उन गोपिकाओं का धान का कूटना और चावल को निकाल करके खीर बना के भगवान को भोग लगाना भगवान की भक्ति हो गई। अरे मथनों पले दही का मंथन कर रही हैं, माखन को निकाल करके भगवान को भोग लगा रही हैं। लंबी चर्चा है। यादो हने बहन ने मथनो पलेप प्रेंखेंग अनाबिरुदितो क्षण मार्जना दऊ, क्षण मार्जना दऊ, मार्जनी बोलते झाड़ू को। घर में झाड़ू मार रही हैं, चिंतन कर रही, आज श्याम सुंदर मेरे घर में आएंगे, स्वच्छ कर लूं, साफ कर लूं, पवित्र कर लूं, घर को पावन कर लूं। रोज झाड़ू घर में लगाती, कन्हैया आएगा, लाला आएगा, वो लाला के चिंतन में रोज घर में को चार चार बार साफ करती है, ध्यान देना। वो झाड़ू का लगाना भक्ति है, दही दूध का दुहना भक्ति है, दही का मथना भक्ति है, मूस से धान का कूटना भक्ति है, गोपिकाओं का प्रत्येक कार्य भक्ति बन रहा है। मैं आपको केवल कहना इतना ही चाहता हूं, अरे भैया हमारे प्रेम प्रिय आश्रम के ट्रस्टी वृंद, आपका एक एक कार्य हे मेरी माताओं, आप बोलोगी आपने ट्रस्टियों के लिए बोला, हमको तो कुछ नहीं बताया है। अरे देवियों, तुम भी इस आश्रम में जो सेवा करोगी वो भक्ति है। और महाराज घर की, घर में करेंगे वो भगवान कहते, वो भी भक्ति बन सकती है यदि मेरा कहना मान लोगी। तो भगवान का कहना है, क्या कहना है, कि तुमको जो संबंधी मिले हैं, जो परिवारिजन मिले हैं, जो स्वजन मिले हैं, जो रिश्तेदार मिले हैं, जो कुटुंब कबीला मिला है, भगवान स्वयं बोले, भगवान स्वयं बोले, सुनिए अभी मैंने यद्यपि श्लोक बोला था, पुनरावृत्ति करता हूं। भगवान स्वयं बोले, अरे मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, इन जीवों को आप मान लो ममई वांस, ये जो भी मुझे मिले हैं ये सब परमात्मा के अंश हैं। क्या है परमात्मा, क्या है, बेटा मिला है, बेटी मिला है, नाती मिला है, पोता मिला है, बहू मिली है, सास मिली है, ससुर मिला है, पति मिला है, अगर है बगैर है, जो भी तुमको मिले हैं वो सारे के सारे क्या है, ममई वांस। भगवान का कहना है कि सब मेरे अंश हैं। समस्या पड़ गई, उलझन पड़ गई, नासमझी पैदा हो गई, भगवान ने कहा ये मेरे अंश हैं, और तुमने कहा नहीं भगवान ये मेरे अंश हैं, समस्या यही तो पड़ गई, और समस्या क्या है। भगवान ने कहा मेरे अंश हैं, और तुमने कहा मेरे हैं, है समस्या की नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बहू आई वो मेरी बेटी नहीं है, वो कितनी भारी समस्या है। बहू आई वो मेरी बेटी नहीं है, बड़ी समस्या खड़ी कर दी। हम प्रायः अखबारों में पढ़ते हैं, हैं अखबारों में, अखबार मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था घर में स्टोव फटा, घर में स्टोव, घर में स्टोव फटा, और स्टोव के फटने से बहू मर गई। बहू, अरे एक कैसा स्टोव है, एक कैसा गैस सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मालूम है कि ये बहू है और बेटी है, ये सासु है। वो जब भी सिलेंडर फटता है, जब भी स्टोव फटता है, तो बहू पे फटता है, बेटी पे कभी नहीं फटता है, ना सास पे फटता है, नहीं समझी, ना सास पे सिलेंडर फटा, ना बेटी पे फटा, ना घर के किसी सदस्य पर फटा, जब भी मैं पढ़ता हूं तो बहू पे ही फटता है, जब भी अखबार में पढ़ता हूं तो ए सिलेंडर स्टोव ये बहू पे क्यों फटता है। अग्रीश भाई, मेरी 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 प्यारी माताओं, ये सिलेंडर बहू पे क्यों फटता है, भगवान कहते हैं तुम अपनी बेटी को तो मानते हो मेरी है, लेकिन बेचारी जो बहू आई है उसे मेरी नहीं कहते हो, ये अपराध है। तुम बेटी को अपना कहो, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहू को भी अपना कहो। सुनो मेरी बात, कथा सुनने आप आए, कथा सुनने आप आए, जब कथा में आए तो सास बन के आई, निवेदन है भोग पड़ते पड़ते इतनी विचार में मजबूती आ जानी चाहिए, भोग पड़ने वाले दिन जब कथा सुन के जाओगी तो सास बन के नहीं जाओगी, मां बन के जाओगी। मेरी सफलता कथा कहने की, कोई बहू कथा सुनने आई है और कथा सुन के जब वो घर जाएगी तो बहू बन के नहीं, वो बेटी बन के जाएगी। जब बहू बेटी बन के जाएगी, सास मां बन के जाएगी, ध्यान देना, ससुर बाप बन के जाएगा। जब ससुर बाप बन के जाएगा, बहू बेटी बन के जाएगी, सास मां बन के जाएगी, तो कोई समस्या उलझन कलह कलेश कहां रहा। सुनो ध्यान से, श्रीमद् भागवत में सभी पक्ष हैं, व्यवहारिक पक्ष भी है, पारमार्थिक पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है, आध्यात्मिक पक्ष भी, सभी पक्ष इसमें हैं। अब कौन किस दृष्टि से इसको देखता है वो उसका अपना चिंतन है, अपनी सोच है, किस चिंतन से देखता है। श्रीमद् भागवत में सभी पक्ष हैं। सुनो ध्यान से, प्रेम से बात को सुनो, बड़ी सुंदर बात है। परीक्षित महाराज ने विवेचन किया, राजन सावधान, कथा को सावधानी से सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमको कथा कहने के लिए इस घड़ी का प्रतिबंध नहीं हो तो सवेरा हो जाएगा, हम कथा नहीं बंद करेंगे। गिरीश भाई, ऐसा कई बार होता है, सच कहता हूं, समय होता है 3 घंटा, हम बोलते हैं 5 घंटा, पर यहां ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, 2-4-10 मिनट तो चलता है, आप घबरा नहीं जाना। हमारे गिरीश भाई ने कहा, प्रकाश भाई, राजेश भाई, इन लोगों ने बोला, सोलंकी सब लोग हमसे बोले, महाराज जी यहां बड़ी समस्या है समय की। एक बड़ी अच्छी बात कही अखंडानंद जी महाराज की, याद दिलाई भक्तों ने, बोले महाराज जी बैठे हैं हमारे सामने, महाराज जी स्वामी जी बोले ये बंबई के लोग कमबख्त हैं। क्या बोले? ये कमबख्त है। अरे इनके पास वक्त कहां है? इनके पास वक्त कम है, वक्त कम है, तो ये कमबख्त है। कैसे हैं? ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, तुम पर वक्त कम है, समय कम है, कोई समस्या नहीं है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने उपदेश दिया, कम वक्त है, कोई बात नहीं, जिनमें विधि हो, जिसमें विधि हो, जहां विधि हो, उनको भगवान का रूप बनकर उनकी सेवा करो, तो वो तुम्हारा किया गया काम भक्ति है, वो भगवान की ही सेवा है, भगवान की सेवा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुनो, उपदेश दिया, यादो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखिंग अनावृत क्षण मार्जनाद। एक हमारे दर्शन है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा सनस्व जातीय दर्शन में, सुनो ध्यान से, पूर्व मीमांसा सनस्व जातीय दर्शन में बड़ी अच्छी बात, इसकी पुष्टि वहां हो रही है पूर्व मीमांसा से। वहां भी कहा है कि कर्मणा बद्धते जंतु और बोले कर्मणैव प्रविलीयते। कहा कर्म से ही जीव बंधन में बंधता है और कर्म से ही छूट जाता है। वो पूर्व मीमांसा है। कौन है? उत्तर मीमांसा नहीं। उत्तर मीमांसा में तो हमारा सिद्धांत है कि कर्मणा बद्धते जंतु और विद्या याच विमुच्यते। ठीक है ना? सिद्धांत है। ऐ बहन मीना, मीता मीना ना, मीता, आज मीता बहन ने हमारी बहुत सेवा की। हमारी बड़ी ललक थी कि हम दर्शन करें मुम्मा देवी का, महालक्ष्मी देवी का। जो हमारी बहन आज हमको ले गई, हमें तो कोई जानकारी इस तरह की कम आया, बहुत बार पर जानना कम हुआ। दर्शन कराया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। भगवान उसको स्वस्थ रखे, ऐसे ही दर्शन कराती रहे। हमने कहा बहन जब तुमको हरिद्वार आएगी मैं तेरे को चंडी देवी दर्शन कराऊंगा, मनसा देवी दर्शन कराऊंगा। नीलकंठ ले जाऊंगा तो ये बहुत दर्शन कराऊंगा, चाहेगी तो केदार बद्री भी ले जाऊंगा, गंगोत्री जमोत्री भी ले जाऊंगा। हम तो कहेंगे अब सब आ जाओ, बड़ बढ़िया सी बस लेके चलेंगे। हम कई बार कई बसें ले जाते हैं, चार चार बसें ले जाते हैं, चार चार बसें ले जाते भर के रसोईया चाहते होते हैं, बड़ा आनंद आता है। और भैया वो आश्रम हमारा नहीं है, वो आपका है। ध्यान देना, बाप का घर बेटी का घर होता है। आप मेरी बेटी हैं, वो आपका घर है। हमारा है कब? बाप का घर बेटी का घर होता है, वो आपका अपना घर है। बेटी जब भी घर में आती है बड़े गौरव के साथ आती है, मेरा घर। यदि ये बंबई की मेरी बेटियां अपने घर में आएंगी तो मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य होगा। खुशी से आप आइए, आपका अपना घर है, प्यार से आओ, अपना स्थान। मैंने बहन से बोला आओ, बड़ी खुशी की बात है, आप भी आओ, आप भी आओ, सभी आओ। बहुत सुंदर बात, प्रेम से सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कर्मणा बद्धते जंतु और कर्मणैव प्रविलीयते। वर्षा हुई, कीचड़ बना, ट्रक आया, कीचड़ उछला, कपड़े गंदे, कपड़े गंदे हो गए। घर पे गए, बाल्टी पानी से भरी हुई है, उस बाल्टी में कपड़ा डाला, कपड़ा साफ हो गया। अरे गंदा किसने किया था? वर्षा हुई, कीचड़ बना, किससे बना? पानी से। गंदा कपड़े को किसने किया? पानी ने किए, पानी ने किया। और गंदा होगा फिर साफ भी किसने किया? पानी ने किया। पानी ने गंदा किया, पानी ने ही साफ किया। सुनना ध्यान से, पानी ने ही गंदा किया और पानी ने ही साफ किया। पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है, कर्म ही बंधन देता है और कर्म ही मुक्ति देता है। ऐसा पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। पर हमारा सिद्धांत, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, आदिगुरु शंकराचार्य का सिद्धांत यह नहीं है। आचार्य शंकर तो कहते हैं कर्मणा बद्धते जंतु और विद्या याच विमुच्यते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हर क्रियाओं को गोपियां इस प्रकार से करती हैं। आप भी गोपी बन के घर में काम किया करो, जो भी काम कर रहा है। गोपी के भाव को लाओ हृदय में, खूब बड़े प्रेम से घर का हर काम करो। एक गोपी मन में सोचती है, प्रभु एक बार आपने हमको वचन दिया था। यहां गोपियों के कई बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आए आ रहे हैं, कुछ कल सुनाए, कुछ आज सुनाए। जो जनकपुर में गोपी देवियां थीं, उन्होंने राम के रूप को देखा और लोहायमान हो गई। कहा कि प्रभु मैं आपको बहुत स्नेह करती हूं। भगवान बोले मैं मर्यादा मना हुआ हूं, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ कृष्णावतार में जब कृष्ण बन के आऊंगा द्वापर में तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छाएं पूर्ण होंगी तुम चलो वहां पर आकर के गोपी बन के आओ। वो गोपियां आज मन में सोच रही मेरे घर में श्याम आए। कौन आए? श्याम आए। एक गोपी ने भावना की और भावना की तो भगवान आ गए। गोपी ने चोरी करने का भगवान को मौका दिया, मौका दिया। ये चोरी क्या है?
आप कहेंगे महाराज भगवान चोरी भी करते हैं। अरे भगवान को चोरी करने की क्या आवश्यकता है, भगवान चोरी नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं?
अरे ब्रजे बसंतम, अरे ब्रजे बसंतम नवनीति चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषे नमामि।
ब्रजे बसंतम ब्रज में निवास करता है, नवनीत चौरम मक्खन को चुराता है। अच्छा मक्खन को चुराता है, दुकूल चौरम चीर को चुराता है। ऐसे चौराग्रण्यम पुरुषे नमामि का भैया ए नहीं करता है, क्या करता है? अरे माखन के बहाने से, चीर के बहाने से, दही के बहाने से, मिश्री के बहाने से अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उस साधक के, उस भक्त के, उस गोपी के अनेक जन्मों को, पापों को चुरा लेता है। क्या करता है वो? चोरी करने नहीं आया। क्या करने नहीं आया? चोरी अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, वो उस भक्त के, गोपी के, साधक के अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेता है। मक्खन नहीं चुराता है, मिश्री नहीं चुराता है, वो क्या चुराता है? पाप चौरम। एक गोपी ने भगवान को मौका दिया, भगवान घुसे, प्रवेश किया और माखन की मटकी उठाई और दौड़ पड़े भगवान। जमुना के किनारे भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। गोपी ने सोचा, हाय दोपहर का महीना है, दोपहर का समय है, जेठ का महीना है, तपी हुई रेती बालुका है, इस बालुका में मेरे श्याम सुंदर भाग रहे हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो गोपी ने दोनों हाथों में दो मटकियां पकड़ी और गोपी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है और जोर से चिल्ला रही है, बोल रही है। क्या बोल रही है? चुन्नू क्या बोलती है? अरे गोपी ने कहा, नीतम यदि नब नीतम 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 यदि नब नीतम 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 किम ये न आपत तापत भूमौ माधव। अरे आप आतप तापत भूमौ माधव। अरे माधव 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 माधव, हे माधव, हे माधव, माधव माधव, नहीं दौड़ो, नहीं दौड़ो। नीतम यदि नब नीतम नीतम नीतम, यदि मक्खन से भरा मटकी आपने ले ली है, नीतम नीतम ने ले लिया है, नवनीतम नीतम, यदि आपने नवनीत को ले लिया है तो क्या हुआ? नीतम यदि नवनीतम किमेते, निश्चय क्या हो गया है? पर एक प्रार्थना है, आपत तापत भूमौ, ये भूमौ जो भूमि है, धूप से बहुत तप गई है, आपत तापत भूमौ माधव, हे माधव भूमि बहुत गर्म है, इस पे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप मत दौड़ो। अरे मैं दो मटकियां साथ में और ला रही हूं, प्रेम से खाओ, छक्के खाओ, जम के खाओ, रज के खाओ। कैसे खाओ? रज के खाओ। भगवान क्यों दौड़ रहे हो? ध्यान देना, जो भगवान को चोर समझते हैं, चोर कहते हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि उसके घर में कभी चोरी हो जाए, भगवान करे ना हो कभी, ऐसा ना बोला, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान किसी घर में कभी चोरी न हो, और कहीं चोर आ जाए, चोरी करके भागने लग जाए, तो आप कहते हैं गहना ये घर में रह गया भैया, ये भी ले जाओ, कभी कहते हो? अरे कुंडल रह गया, हार रह गया, कान का कर्णफूल रह गया, ले इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, कभी तुम नहीं कहते हो। पर गोपी तो दोनों मटकियां ले, दोनों हाथों में लेके कहती है, हे श्याम सुंदर ए भी रह गई, ए भी ले जाओ, ए भी ले जाओ, ए भी ले जाओ, ए भी ले जाओ। भगवान तो कभी नहीं कहते, चोर को आप कभी कुछ देते नहीं, मिल जाए तो ढंडों से पीटते हो। ये मेरा कन्हैया चोर नहीं है, ये मेरा लाला। वृंदावन बिहारी लाल की, ये गोपी और भी है, वो क्या करती आपको मालूम है? उस गोपी ने ऐसा ही किया, चीर सार मपहृत्य, चीर सार मपहृत्य संख्या स्वीकृतम पलायनम तुया मम मानसे घदान्दतामसे नन्न नन्नम कथम नलीयसे। क्षीर सार मपहृत्य, क्षीर माने दूध का जो सार मक्खन है, मपहृत्य। भगवान एक गोपी के घर में घुस गए और माखन की मटकी ले ली। भगवान ने सोचा कहां खाऊं, ऐसी जगह खाऊं कोई देख न पाए। सो भगवान ने उसके घर में एक ऐसा कमरा खोजा जिसका बल्ब फ्यूज हो गया था, कमरे का अंधेरा था, प्रकाश नहीं। भगवान ने सोचा इसी में बैठ के खाता हूं, बहुत अच्छी जगह है। गोपी ने कहा घोषे तो घर में थे, घर में तो घोषे थे लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ते, कहां चले गए। जहां जहां लाइट थी सारे घर में खोजा, कहीं दिखाई नहीं पड़े। गोपी सोचा नहीं था कि उस कमरे में भी जा सकते हैं ये, अब वही रह गया है। तो जो गोपी घर में उस कमरे में उस रूम में गई, अंधेरे रूम में, सो देखा कन्हैया बैठे हैं मक्खन खा रहे हैं। गोपी ने कहा मेरे श्याम सुंदर, तुमने छुपना तो चाहा, छुपना पहा चाहा चाहा, पर तुमको छुपना आया नहीं, ये तुमको छुपना ही था। तो आप वहां न छुपते, कहां छुपते, कहां छुपते। गोपी ने कहा अरे मम मानिशे, मम मानिशे घनांदतामिशे, नन्न नन्नम कसम न लीयते। हे श्याम सुंदर, मेरे मन के अंदर घनांद बहुत बड़ा अंधकार है, यदि वहां छुप जाते तो शायद बच सकती थी। कभी चोर कहा कि मेरे दिल में बसता, ये गोपी तो कह रही यहां बैठे खाते तो बहुत अच्छा रहता। ध्यान देना, ये गोपियां योगी इतनी अमलात्मा महात्मा है, बड़ी साधनाएं की हैं, तब इस स्थिति पे। स्कंद पुराण की कथा है, थोड़ा टच करता हूं। स्कंद पुराण की कथा है, स्कंद पुराण में लिखा है शुतपा नाम के ऋषि थे, उस ऋषि ने 10,000 वर्ष तप किया। 10,000 वर्ष उस समय लाखों लाखों वर्षों की जीवनियां हुआ करती थी। कहे उसने इतना लंबा तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, बरम ब्रूही बर मांग। कहा भगवान बर मांगना चाहते हो तो बस एक ही बर मांगता हूं कि आप मुझे ब्रज की गोपी बना दो। क्या मांगा, कथा स्कंद पुराण की है, मुझे प्रभु आप गोपी बना दो ब्रज की, मुझे स्त्री बना दो, मुझे नारी बना दो। क्या बना दो जी, ए भैया मेरे बंबई के लोगों, तुम नारी बनना चाहोगे? बनना चाहोगे कोई है भैया गिरीश जी? बहुतों के नाम नहीं याद हैं। सोलंकी जी सुनो ध्यान से मेरी बात को, बहुत प्यारी बात, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देना, ध्यान देना। भगवान ने कहा, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात। कबीर ने लिखा है अरे शीश दिए यदि हरि मिले, शीश दिए यदि हरि मिले तो भी सस्ता जान। कबीर ने तो लिख दिया है, कबीर ने तो कह दिया अरे राम मेरा प्यू। क्या कह दिया, अरे राम मेरा प्यू और मैं राम की बहुरिया, मैं राम की बहू हूं। क्या हूं, अरे मेरे प्रिय प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर नारी बन के आ गए ब्रज में है? हमें क्या आपत्ति है। एक बार की एक संत की बात सुनाऊं, हमने किसी साहित्य में पढ़ा, किसी पुस्तक में पढ़ा, वहां लिखा किसी ने संत से प्रश्न किया कि महाराज भगवान आप पर खुश हो जाए, दर्शन दें तो आप क्या वर मांगोगे। वो महात्मा जी बोले, उस पुस्तक में लिखा था, वो महात्मा जी बोले यदि भगवान खुश हो जाएंगे तो मैं भगवान से कहूंगा मुझे नारी बना दो। क्या बना दो, का नारी क्यों बन रहे हो? इसलिए नारी बन रहा हूं कि नारी समाज का सृजन करती है, समाज का सृजन करती है, समाज को बनाने में, समाज को उत्थान की ओर ले जाने में, समाज को प्रगतिशील बनाने में जितना बड़ा नारी का हाथ है उतना पुरुष का नहीं है, उतना पुरुष का नहीं है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खोली आप मनुस्मृति को, मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है यत्र नारियास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए कहा कि नारी पूज्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, स्कंद पुराण की चर्चा है। स्कंद पुराण में उस गोपी उस ऋषि ने बड़ा तप किया, भगवान से बोला खुश हो तो नारी बना दो, नारी बना दिया और ब्रज में आ गए। भगवान ने सोचा इसने तो बहुत लंबा तप किया है, इसके घर में मैं जरूर जाऊंगा, इसके घर में मैं हमने जरूर जाना है। और भगवान पहुंचे, स्वप्न दिया कि आज मैं तेरे घर में आ गया आ रहा हूं तेरे तप को सफल करने के लिए। सो गोपी ने तैयारी की पूरी, वो तो चोरी करने आते हैं, सो सब चोरी की तैयारी कर दी, मक्खन वगैरह भर के मटकियां आप तैयार कर दी और खूब ऊंची बांध दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भगवान आए, भगवान ने सोचा ये तो बड़ी तपस्वी गोपी है, लंबी चौड़ी है, तो उसी प्रकार से अकेले नहीं जाना चाहिए, सारे ग्वाल बालों को लेकर के भगवान अंदर प्रवेश किए। गोपी घर में थी नहीं, और जब नहीं थी तो भगवान ग्वाल बालों को लेके मनसुखा भैया बहुत ऊंचाई पर है घोड़ा बन जा, श्री दामा उसके ऊपर घोड़ा बन जा। वो बनकर के कन्हैया ने यूं मटकी उतारी, सबको बांटा, स्वयं भी खाया स्वयं भी। इतने में जो गोपी थी सुत्ता नाम की गोपी, ऋषि जो था वो गोपी बने, वो सुत्ता नाम की गोपी ने अंदर प्रवेश किया, हवाई चप्पल थी चटपट खटपट। कन्हैया समझ गया भगो गई अभी आने वाली है, ग्वाल बालों से कहा भैया भागो भागो, हम तो बहुत चुस्त हैं चालाक हैं बात करने में, तुम फंस जाओगे, छुप जाओ जहां तक जिसको जहां जगह मिले। सारे ग्वाल बाल इधर उधर छुप गए, सारे ग्वाल बाल छुप गए। भगवान हाथ मटकी लिए हुए खड़े हैं। गोपी ने पूछा अरे कस्तुम नंद सुता किमत्र भुवने गुप्तेश मातुर्भयात् कस्मात घोरस आत्म सात पुरुषे मार जार संरक्षया और बाला किम मम साक्षिणो दधि कथम वक्त्रोषि वक्त्रम पुरा मथनन्ति करता दिटो मस्यनो मुग्धो हरि पातु वह। गोपी ने प्रश्न किया कस्तम तुम कहा कस्तम, तत्शब्द का रूप है कहा तुम कौन हो, काकव के कम कौकान के इनका भ्रम कई ए रूप चलते इस प्रकार से कहा कौ के कम कौकान के इनका भ्रम कई कस्म कयो केशु हे सब कहा किमत्र भवने मेरे घर में कैसे आए। गोपी ने सोचा कि जब मैं ऐसा कहूंगा कस्तम तुम कौन हो तो शायद कृष्ण बोल देंगे मैं आप ही का हूं। पर जब ऐसा पूछा थोड़ा अक्कड़ में पूछा गोपी ने कस्तम तुम कौन हो तो भगवान ने कहा जिस भाषा में बोलती हम उसी भाषा में उत्तर देंगे। कस्तम उन्होंने कहा कस्तम कौन हो, बोले नंद सुता मैं नंद का लाला हूं यशोदा का लाला हूं। जब नंद के लाला हो तो मेरे घर में क्यों आए, किमत्र भुवने मेरे घर में क्यों घुसे, नंद के लाला को नंद के घर में जाना चाहिए, मेरे घर में क्यों आया किमत्र भुवने। बोले गुप्तोषी मातुर भयात मैं मैया के डर के भय से। गोपी पूरी बात बता दूं, अरे आज हुआ क्या था, मैया तो दही मथ रही थी, हमको बड़ी भूख लगी थी, जो मैया से माखन मांगा और मैया ने माखन नहीं दिया तो मेरे को गुस्सा आ गई और सिलबट्टा बट्टा होता ना पीछे वाला वो पड़ा था, तो मुझे गुस्सा आई और उसी दही की जो मथ रही थी उसी माटली में मैंने कस के मारा तो मटकी गई टूट और मम्मी गई रूठ, मटकी फूटी मम्मी रूठी, अब तो आगे आगे मैं और पीछे पीछे मेरी मैया। सच बताऊं गोपी तुझे पहला घर मुझे तेरा ही दिखाई पड़ा, सो गुप्तोषी मातुर भयात मैया के भय से तेरे घर में घुस गया कि रक्षा किसी प्रकार से हो जाए तो मैया बहुत पीटेगी। अच्छा तो छुपने आए थे, हाँ छिपने तो आए थे और क्या बात है, अच्छा तो ठीक है किसी कोने में छुप जाते कस्मात आत्मसात प्रकुरुषे ये मेरी मटकी क्यों ले रखी है हाथ में है? अच्छा मटकी, हाँ मटकी क्यों ले रखी है? बोलो ये मेरी मटकी क्यों छुप जाते किसी कोने में, मटकी क्यों? आत्मसात्र पुरुषे, अरे गोपी जब मैं तेरे घर में घुसने को चला तो इतना भारी बिलाव, इतनी भारी बिल्ली तेरे घर में कूदी, मैं सोचा मेरी प्यारी प्यारी गोपी का जितना दही मक्खन रखा है दूध ये सारा बिल्ली खराब कर देगी। सुमार जा रे संरक्षक रक्षया, उस बिल्ली से बचाने के लिए तेरी मटकी मैंने उठा ली है, कोई गुनाह थोड़े किया है, अच्छा काम किया तो नुकसान बचा दिया, फिर भी अकड़ रही ऊपर से। मार जा रे संरक्षया, अच्छा गोपी ने सोचा कन्हैया को जो प्रश्न करती हूं तड़ाक से उत्तर देता है, ये वकीलों से आगे है, इसके सामने वकील फेल हैं, अब ऐसा इसको प्रश्न पूछूं इसको उत्तर ही नहीं आवे, कौन सोची गोपी ऐसा प्रश्न करती हूं जिसको उत्तर ही नहीं आए। सो गोपी सोचने लगी क्या सो? और प्रायः होता है जब कोई गहन बात सोचता है या तो यूं करता है या तो कान में कलम डालता है या कोई ऐसे अंगूठा को कलम को कोई खाने लगता है, जब सोचता है होता प्राय। गोपी ने सोचा और जो ऐसे किया तो वो सारे ग्वाल बाल लटके पड़े छत की कड़ियों में है, यूं देखा तो पीछे तखत के नीचे, यूं देखा तो कुछ तकिया के नीचे कुछ गद्दे के नीचे, वो सारे घर में छुपे इधर उधर। गोपी ने कहा ये श्याम सुंदर ये सब क्या हो रहा है, ये सब कौन, ये सब कौन है? का गोपी तेरे को सच बतलाऊं, सच बताऊं, अरे मेरी कितने बार सगाई आई शादी आई लेकिन लोगों ने बदनाम कर दिया, चोर है चोर है चोर है, सब आती हैं लौट जाती हैं, अभी तक कुंवारा बैठा हूं देख ले, शादी नहीं हुई, हमने सोचा अब अकेले कभी जाएंगे ही नहीं, ये बाला किम, ए बाल का कौन है? बोले बाला किम, बोले मम साक्षिणो, ए मेरे साक्षी हैं कि मैंने चोरी नहीं की, किसी से बुलवा ले किसी को पूछ ले, सारे ग्वाल बोले, ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया चोर नहीं है, कन्हैया चोर नहीं, कन्हैया चोर नहीं। अच्छा चोर नहीं, हाँ जी चोर नहीं है। श्याम सुंदर ये बतलाओ ये आपके गात्र में गालों में जो माखन लगा है और ओठों में माखन लगा है ये रंगे हाथों पकड़ने गए, मेरी मटकी है गालों में मक्खन लगा ओठों में मक्खन लगा और बोलते मैं चोर नहीं हूं, कौन कहेगा कौन मानेगा? भगवान ने कहा गोपी सच तेरे को बतलाऊं तू विश्वास कर चाहे न कर, पर बात मैं सच कहूंगा, जब मैं दौड़ रहा था ना मां से बचने के लिए, मैं भाग रहा था तेजी तेजी से और भागते भागते एक आगे ईंट पड़ी थी, उसे मेरी टक्कर लगी और मैं गिर गया, जब मैं गिरा तो मेरी मैया आई और मैया तो दही बिलो रही थी मक्खन निकाले रही थी, उसके सारे हाथ मक्खन से भिड़े हुए थे, सो मेरी मैया ने वो मक्खन से अपना सना हुआ हाथ एक इधर मारा और एक इधर मारा और तीसरा मैया ने बीच में जड़ दिया यूं। सो देख गोपी सच बात तो यही है कि ये मक्खन ये मेरा अपना मक्खन है और तुझे कहने पर विश्वास नहीं आता तो सूंघ के देख ले, सूंघ और फिर भी तेरे को विश्वास नहीं तो चाट के देख ले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं विचित्र लीलाएं। भगवान श्याम सुंदर सुत पाचे बोले हे सुतपा तुमने बहुत आराधना की, तुमने बहुत उपासना की, मैं तो अपने भक्त के अधीन हो जाता हूं। भगवान बोले अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं, मेरा भक्त जब जहां जैसे जब जिस रूप में मुझे पुकारता है मैं उसी रूप में वहां उसके पास प्रकट हो जाता हूं, वैसा ही बन जाता हूं। अनेक ऐसी लीलाएं भागवत में आई हैं, समय बहुत हो गया, मैंने बहुत समय ले लिया, एक ही चरित्र में मैं क्या कहूं, मैं बह जाता हूं तो बह जाता हूं, बह जाता हूं, कई लीलाएं ऐसी हैं। भगवान बहुत चोरी करते पकड़े नहीं जा रहे, पकड़ में नहीं आ रहे, आज क्या किया गोपियों ने, इसे जरूर पकड़ना है, मटकी टांगी घंटी लटका दी, जरूर पकड़ा जाएगा, अब नहीं बच सकता है। भगवान घुसे ग्वाल बालों को लेकर के मटकी चुराने, गोपी ने कहा कि अब तो पक्का पकड़ा जाएगा। भगवान आए, घंटी देखी बंदी मटकी के साथ, बोले ये घंटी तो मंदिर में होती, यहां क्यों लटकी, ये उल्टा उल्टा काम क्यों हो रहा है, घंटी मंदिर में रहती है ये मटकी के साथ क्यों लटकी, इसका क्या मतलब है। भगवान सोचे कोई दाल में काला है, पर कोई बात नहीं। भगवान घंटी से बोले देख दुनिया में हमारी इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता है, घंटी काम खोल कान खोल के सुन ले, अरे मेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एको फूल, बोल तू बजेगी। घंटी बोली खाए को बजूं, खाओ पियो मौज लो। कन्हैया मटकी उतारी, घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, सभी को बांटना शुरू किया, घंटी नहीं बजी। जब कन्हैया ने माखन उठाया और जो खाना चाहा तो घंटी टन 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 टन, क्यों बजी। कहा प्रभु घंटी के बिना बजे भोग लगता ही नहीं, मेरा बजना जरूरी है, मेरा बजना जरूरी है, हमें बजना ही पड़ेगा, बजना ही पड़ेगा घंटी। गोपियां दौड़ी, हाथ पकड़ा, चलो मैया के पास, रोज चोरियां करते हो आज पकड़े गए हो। भगवान ने कहा फंस गया हूं, हाथ पकड़ा, लंबा सा घूंघट निकाला, ब्रज की रीति है आज लंबा घूंघट निकलता वहां, हाथ पकड़ा ले गई। भगवान के पीछे पीछे श्रीदामा आ रहा था, मुड़ के देखा, गोपी से बोला गोपी तेरा हाथ बड़ा सख्त है और मेरी कलाई बड़ी मुलायम है, देख पकड़, मैं मने नहीं करता हूं पर थोड़ा हाथ बदल ले। पकड़े रहे कोई बात नहीं, थोड़ा हाथ बदल ले। गोपी को दया आई, अच्छा ला चल दूसरा हाथ दे। इतने में गई पहुंचे यशोदा मैया, ए मेहर, अरे मेहर, मेहर बोलते माता को, अरे मेहर, ओ मैया तेरे लाला ने माखन चुराया है, देख रंगे हाथ पकड़ के ला लाऊं इसको, कभी नहीं मानती थी आज तो मानेगी, देख मैया ये तेरा लाला ने। यशोदा सोची मेरे लाला ने, मेरा लाला तो कब से आया है, अभी मैंने खिला पिला के थपकी मार के सुलाया है, लाला चोरी किया, कहां चोरी किया, कैसे चोरी कर लिया। यशोदा मैया दरवाजे पे आई, मैया तेरे लाला ने चोरी की, अरे गोपी घूंघट खोल परे देख। और गोपी ने घूंघट खोला और देखा तो उसका पति था, धक तेरी कि तू कब आ गया, तू कब आया। बोले जब तूने ऐसे किया था ना और ऐसे पकड़ा तो मैं सोचा कहीं ले जा रही होगी, हम बोले ही नहीं। बोला क्यों नहीं, बोले क्या बोलना था, जब तूने पत्नी हाथ पकड़ा तो कैसे छुड़ाना था, कैसे घर में नहीं जाऊंगा, तो मैं तेरे साथ साथ चल पड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ऐसी भगवान की बड़ी लीलाएं हैं, माखन चोर की लीलाएं बड़ी प्यारी लीलाएं। अब एक भजन सुने उसके बाद में और कथाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जल्दी।
हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया मटकिया फोड़ दी मेरी रे, मटकिया फोड़ दी मेरी रे, गगरिया फोड़ दी मेरी रे, मटकिया फोड़ दी मेरी। किया कर पाछ से चुपके से तेरे इस छलिया ने काना ने, मटकिया फोड़ दी मेरी रे, मटकिया फोड़ दी मेरी।
हेलो हेलो हेलो
चुराता है हो मेरा माखन चुराता है
अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है
ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है हो मुझे आंखें दिखाता है चुंदरिया गुब्बारा हाथ घूमट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी रे नथनिया तोड़ दी मेरी
मुझी वो बातों में सदा घर पे बुलाती है सदा घर पे बुलाती है
अगर इनकार करूं मैया शिकायत ले आती लेके आती है ये झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया तोड़ दी मेरी रे मुरलिया तोड़ दी मेरी तोड़ी दी मेरी
बड़े ही सुंदर मधुर शब्दों में आपने माखन चोरी के भजन लीला को भजन के रूप में सुना। इन बच्चों का ये वैशिष्ट है, हम जो कहेंगे वही अपने शब्दों में भजन के रूप में सुनाएंगे, ऐसा प्राय कम देखा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फलानी तत्र भूराणी, फलानी तत्र भूराणी, पतंती पतितानि च शन्ति किन्तु अविरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। आज भगवान कृष्ण और बलराम दोनों, विस्तार का समय नहीं है, हर कथा का ऐसा ही विस्तार किया जा सकता है, पर घड़ी जवाब दे रही है, आ बिल्कुल विस्तार नहीं, संक्षेप में सुनो। फलानी तत्र भूराणी पतन्ति पतितानि च शन्ति किन्तु अविरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। बलराम और कृष्ण सखाओं को लेकर के तालबन में गई। तालबन एक ऐसा वन है वृंदावन में, सुनना ध्यान से, इतने वहां पर सुंदर फलों वाला वो सघन वन है, पर वहां एक धेनु का सुर रहता है जिसका नाम गर्धवासुर। वो वहां के फलों को ना तो भैया स्वयं खाता है, गधा क्या फल खाएगा, वो तो घास खाता है ना तो खुद खाता है न खाने देता है, न खुद खाता है न खाने देता है। ध्यान देना इस प्रसंग से, समझना कि जिंदगी में जो खा पी लोगे भई अपना है, रख के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बड़ी सुंदर बात सुनना ध्यान से। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गए, ब्रजवालों ने शिकायत की कि लाला कन्हैया उस वन में इतने फल हैं, पर वहां का जो असुर धेनु का असुर है वो हम लोगों को घुसने ही देता है और दुलत्तियों से मार मार के हम लोगों के बुरे हाल कर देता है, कई तो बाल बाल ब्रजवाल बेहोश हो गए हैं, फल नहीं खाने देता है। भगवान बलराम के चैत्य वन में प्रवेश किए, जब भगवान ने प्रवेश किया बलराम ने पेड़ को पकड़ा, खूब हिलाया और जब हिलाने की आवाज हुई तो धेनुकासुर गर्भासुर दौड़ते हुए रेंगते हुए आया और उसने बड़ी तेजी से दुलत्ती चलाई, बलराम पर मारी, कृष्ण पर मारी और भाग गया। बलराम कृष्ण ने कहा, देख भाई पहले मेरी बात सुन ले, तेरी मेरी बात सुन, इस वन के अंदर इतने मधुर फल हैं, मीठे फल हैं, पके हुए फल हैं, अच्छे अच्छे फल हैं, ये बेकार जाते हैं, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये तो कोई गरीब खाता है, ये तो कोई व्यक्ति खाता, तो उन्हें खाने देना चाहिए, ये तेरा आवास है, तेरा निवास है, तेरा क्षेत्र तूने मान लिया है तो रह इसमें, लेकिन फलों को ऐसा मत, फलों के साथ ऐसा मत कर, तू घास खाता है घास का, इतने अच्छे फल सड़ जाते हैं, तूने खाना तू भी खा, पर इनको सड़ना अच्छा नहीं है, ऐसा भगवान ने उसको उपदेश दिया। पर वो तो गधा उपदेश क्या मानने वाला, वृंदावन बिहारी लाल की, अरे भैंस के आंगे बीन बजाजी, अरे भैंस के आंगे बीन बजाजी, मर मर रो थानी, भीष आंगे बीन बजाओ तो क्या समझेगी, कुछ नहीं समझेगी, वो कुछ नहीं समझा, जब नहीं समझा तो भगवान ने तो बहुत प्रयास किया, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लोभी धर्म न कर सके, अरे लोभी धर्म न कर सके और लोभी यश न कमाए, अरे खड़ो मजूषा खेत में, अरे खड़ो मजूषा खेत में, और भैया खाए न खावन दे। मजूषा जो होता है ना,
आपको आइडिया ज्ञान नहीं होगा, खेतों के अंदर जब किसान पशुओं से बचाना चाहते ये तो धोखा बना देते आदमी को। वो खड़ा रहता है, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, वो समझते व्यक्ति बैठा है तो भाग जाते हैं। लोभी धर्म न कर सके, लोभी ऐसे न कमाए, और खड़ो मजूसा खेत में, अरे खाय न खाब न दे। समझाया पर समझाया माना नहीं, जब नहीं माना तो भगवान ने सोचा अब क्या करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे खाए सके, अरे खाई सके न खबाई सके, अरे खाए सके न खबाई सके, निज लोभ कुसंग में आयु गमा दी। खाई सके न खबाई सके, निज लोभ कुसंग में आयु गमा दी, और मंजुल धर्म को त्याग दिए। अरे मंजुल धर्म को त्याग दिए, तेसे गदहा भय धोबत ला दी। ए गर्दभासु, तू गधा क्यों बना है? तू गधा क्यों बना? इसलिए तो गधा बना है, किस लिए? न खा ही सके, इन फलों को तू खा सकता है, न खिला सकता है। खा ही सका न खबा ही सका, निज लोभ कुसंग में आयु गमा दी, और मंजुल धर्म को, भैया मंजुल धर्म को और त्याग दिए, चैते गधा भय ढो बतला दी। तू गधा क्यों बना? इसलिए तो बना है, और दोबारा कुछ कुछ बनना है और नीचोनी में जाएगा। सावधान हो जा, संभल जा, बात को मान ले, वरना काम ठीक नहीं होगा। भगवान ने समझाया, समझ में नहीं आया, भगवान ने कहा जल्दी खत्म करता हूं ये मेरे, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, बलराम तुम ही कह सकते हो, हम तो वचन दिए थे नरसिंहावतार में, इसे नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा, अब बलराम तुम इसका कल्याण करो। भाग के आया, दौलती चिल्लाई, बलराम ने पकड़ी, घुमा के पेड़ से मारा, मर गया, धनकाचर मर गया। कन्हैया लाल की एक कथा, सुखिया मालिक भक्तिभाव में तल्लीन है, रोज फल बेचने जाती है, नंद भवन का परिक्रमा करती है, फलों को बेचती, बड़ा प्यारा प्रसंग था, मैं जब कहता हूं तो घंटों चलता है, बड़ा भाव का प्रसंग है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कहता हूं। आवाज लगाई, फल ले लो री फल, अरे फल ले लो री फल, कोई तो नहीं सुन पाया, कोई तो नहीं आया, पर कान्हा ने सुन लिया। ध्यान देना, जब कोई भक्त भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, जब परिपूर्ण हो जाता है, जैसे भरा हुआ घड़ा छलकता, भरी हुई बाल्टी छलकती है, ऐसे जब प्यार, जब प्रेम, जब भक्ति छलकने लगती है, तो उसकी हर आवाज भगवान तक पहुंचती है। अरे चीटी के पगनू पुरबाज, अरे चीटी के पगनू पुरबाज, वह भी साहिब सुनता है, ये मैं समझना, परमात्मा आवाज को नहीं चुनता है। अरे चीटी के पग में बना नूपुर भी जब बजता है तो भगवान को सुनाई पड़ जाता है। तो क्या भैया आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी? जरूर जरूर पहुंचेगी, जरूर जरूर। सुखिया ने आवाज लगाई, भगवान ने दोनों हाथों में क्या दे जाके, अनाज भरा है, भाव में नहीं जाऊंगा, काम खराब हो जाएगा, और बात नहीं कह पाऊंगा। अनाज भरा है, कन्हैया मालन के पास गए हैं, मालन ने भगवान को देखा है, भगवान ने मालन को देखा, मालन ने भगवान को देखा है, हाथों में उंजली, में उंजली के अंदर दाने भर के पूरी फुल उंजली चले थे, लेकिन जब ठुमक ठुमक चल रहे थे, तो ठुमक ठुमक चलने से बालक ही तो हैं, बाल लीला कर रहे हैं ना, तो धीरे 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 इन दोनों उंगलियों के बीच से अनाज गिर गया, खाली खाली उंजली बंदी है। भगवान को सुखिया मालन निहार रही है, और भगवान सुखिया मालन को निहार रहे, समाधि लग गई दोनों की। जब प्रेम से प्रेम, भाव से भाव मिलता है तो सागर बन जाता है, और सागर अथाह होता है, सागर अथाह होता है, ये भक्ति का सागर अथाह है, कि किसी था अभी तक ले नहीं पाई, दोनों भक्ति के सागर में, दोनों प्यार के सागर में डूब गई। टीकाकार लिखते हैं 4 घंटा तक खड़े रहे,
बालकृष्ण लीला शक्ति ने कहा कि बहुत देर हो गई श्यामचंद्र को खड़े खड़े। चंदल बदला सुखिया को भगवान श्यामचंद्र को उस लीला शक्ति ने जागृत किया, और जब जागृत किया कन्हैया ने कहा ये अनार्ज लो, हम भर के मुट्ठी लाए हैं, इसके बदले मेरे को फल दो। सुखिया माले ने अपने जीवन को धन्य समझा। उजली में तो एक भी दाना नहीं था, भगवान ने ऐसे दे दिया। सुखिया माले ने डलिया से फलों को उठाया, छोटी तो उजली थी, रखना शुरू किया फलों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भगवान की छोटी सी अंगुली उंजली में सारे डलिया के फल आ गए। कन्हैया की उंजली में सारे फल आ गए। कन्हैया फलों को लेता है, सुखिया माले ने अपने को सराहा है कि देखो आज जगत को देने वाला उसको हम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, दर्शन हुआ, भक्ति सफल हुई। सुखिया ने अपने को धन्य धन्य कृत्य कृत्य समझा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की चिरहण लीला। चीरहरण की लीला संक्षेप ही करूंगा, कुछ कह नहीं पाऊंगा। चीरहरण की लीला होती है, बड़ी सुंदर लीला है। हम ये लीला इसलिए जरूर कहेंगे कि लोगों को बड़ी भ्रांति इस लीला के प्रति। चीरहरण की लीला पर लोग प्राय टीका टिप्पणी करते हैं, उन्हें सूझ नहीं है, उन्हें समझ नहीं है क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं चीरहरण की लीला पर। थोड़ा ध्यान से सुनना, विवेचन आ रहा है। अरे कात्यानी महामाये, कात्यानी महामाये, महायोगी निधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरते नमः। कात्यायनी भगवती की पूजा करने की रोज देवियां जाती हैं, रोज जाती हैं कुमारिकाएं। कब जाती हैं? बोले हेमंत के प्रथमे मासे, हेमंत के प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरहव्यस्य भुंजानाम कायत्यानि अर्चयन व्रतम। उस व्रत को पूर्ण करने के लिए हेमंत के महीने में वो देवियां जाती हैं, कात्यायनी की पूजा करती हैं और मांगती हैं, हे श्याम सुंदर वर के रूप में आप मुझे ही मिले। और दर्शन करने के पहले यमुना में स्नान करती हैं। क्या करती हैं? ध्यान देना, अति संक्षिप्त। स्नान किया है, कथा पक्ष पहले कहता हूं। भगवान ने वस्त्रों को चुराया है, पेड़ पे टांग दिया है। ये वस्त्र क्या है ध्यान देना थोड़ा, हम केवल अध्यात्म कहेंगे, कथा पक्ष कम कहेंगे। सुनना ध्यान से, गोपियों के भगवान ने वस्त्रों को चुराया है। सुनना ध्यान से, बहुत प्यारी बात है। ये जो जीव है ना, जीव यही गोपी है, ये गोपी है। और इस गोपी के जीव रूपी गोपी के तीन वस्त्र हैं। कितने वस्त्र हैं? तीन। पहला परा, संक्षेप, अपरा और प्रकृति। परा, अपरा और प्रकृति, ये तीन वस्त्र हैं इस जीव के। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये तीन वस्त्र ध्यान देना। मल, विच्छेद, आवरण, ये तीन वस्त्र। प्राय व्यक्ति के तीन ही वस्त्र होते हैं, सबके तीन वस्त्र होते हैं, टोपी, कुर्ता, धोती, यही माताओं के तीन तीन वस्त्र पहनते। ये तीन ही वस्त्र भगवान ने चुराए, तीन ही वस्त्र चुराए भगवान ने। मल को चुराया, विच्छेद को चुराया, आवरण को चुराया।
परा को अपरा को प्रकृति को सतोगुण रजोगुण तमोगुण जब आदमी तृणातीत हो जाता है तो उस परम तत्व को पा लेता है। सो भगवान ने इस प्रकार से इन गोपियों के इन तीन वस्त्रों को चुराया है, लज्जा और अपवाद को ऊपर उठवाया है और भगवान ने कहा कि ऐसा होने से आप में कोई विकार नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कोई वस्त्र नहीं चुराए, कपड़े नहीं चुराए, उन्होंने उनका मल विच्छेद आवरण को चुराया है और यही इस चिर लीला का वास्तविकता है, सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो इस प्रकार से भगवान ने मल विच्छेद आवरण को चुरा करके गोपियों को ब्रह्म साक्षात्कार का बोध कराया है। वरना तो वो तत्व परम तत्व है, वो तो ऐसा तत्व है गोपी में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अभेद स्वरूप है, वहां वासना की कोई बात ही नहीं है। न गोपी में वासना है न कृष्ण में वासना है, दोनों ही तो वासना से रहते हैं, एक ही तो तत्व है। तो एक तत्व में वासना, और जिस समय एक भगवान लीला करते हैं उस समय भगवान मात्र 5 वर्ष के हैं। 5 वर्ष के बच्चे में क्या वासना होती है, इस दृष्टि से भी देखो तो भी ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। एक लीला छोटी सी और मैं कहूं, मेरा दिल तो करता है पर मैं क्या करूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सुनना भैया ध्यान से लीला को। एकदा गृहदासीषु, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्ताशु निर्मंथम स्वयं दधि। मैया को लाला से इतना प्यार है कि वो स्वयं दही को मथने लगी। स्वयं लाला को स्वयं मथ के खिलाऊंगी। लाला आया, मैया भूख लगी, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जल्दी जल्दी दो। मैया ने ध्यान नहीं दिया, उसने फिर उठाया पत्थर मटकी में मार दिया, वो टूट गई। मैया को गुस्सा आया। अब तो मैया ने क्या किया, लेकर के रस्सी कन्हैया को बांधना शुरू किया। ये भी बड़ा अच्छा प्रसंग था। संक्षेप, मैया को मैया ने बांधा और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अरे विशाखा रस्सी कम पड़ गई, रस्सी को ला। विशाखा रस्सी लाई, जोड़ी बांधी, फिर लपेटी, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। फिर सखी से बोला रस्सी ला। अब रस्सियों पर रस्सी आ रही हैं, शहरी गोकुल की रस्सियां लग गई पर 2 अंगुल कम रही। 2 अंगुल ध्यान देना, एक परमात्मा द्वैत से नहीं बदलता है। 2 अंगुल का मतलब द्वैत स्वरूप को समझिए तभी वो बनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने लाला को बांधा संक्षेप, और लाला को बांध करके उखल के साथ जोड़ दिया, बांध दिया हाथों को बांध के, कमर को बांध के उखल से बांध दिया। मैया चली गई, लाला कन्हैया घुटनों के बल चलता हुआ उखल को घसीटता हुआ इमलाल के बीच सामने खड़े हुए थे, बीच से जाके निकले। और जब दोनों के बीच से निकले तो मूसल अड़ गया, उखल अड़ गया। जब उखल अड़ा दोनों के बीच में तो भगवान थोड़ा आगे पीछे हुए। अब आगे पीछे हुए तो दोनों पेड़ ऐसे ऐसे होने लगे। भगवान ने जमकर ताकत लगाई तो दोनों पेड़ धराम से चर धम गिर गए। दोनों पेड़ गिर गए। उन दोनों पेड़ों गिरने से तो उसमें से दिव्य सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए नल कुंवर मणिक ग्रीप नाम के, आप कौन हैं महाराज, मैं मणिक ग्रीप हूं, नल कुंवर हूं, ऋषि के शाप से मेरा ये स्थिति हुई है, आपकी कृपा से हम इस मुक्ति को पा गए हैं। तो इस प्रकार से उनकी मुक्ति होती है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसी प्रकार से भैया अन्य याचना की भावना से भगवान ने एक पत्नियों को पास भेजा है, कालिया नांग को मारा है। कालिया मालूम, कालिया नांग क्या है? केवल अध्यात्म को कथा नहीं, अध्यात्म आपने बहुत कथा बहुत बात सुनी होगी। ये कालिया नांग क्या है सुनना ध्यान से। आज भगवान ग्वाल बालों को लेकर के यमुना के किनारे पे गए हैं अथसंक्षेप का। भैया यहां पर थोड़ा गेंद खेलने की इच्छा हो रही है, गेंद खेलने की। गेंद खेली, कान्हा ने गेंद चलाई, यमुना में गिरी। जब गेंद यमुना में गिर गई, मनसुखा बोला मेरी गेंद मुझे भी चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तो दो ले लो चार ले लो, पर वो गेंद कैसे लाऊं, वो तो यमुना में गिर गई है, इसमें नाग रहता है, हमारे क्या हाल होंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमको वही गेंद चाहिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। अब भगवान ने ध्यान देना गोता लगाया, छलांग लगाई उस हृदय के अंदर और लगा करके परास्त किया, फन पे नाचे, परास्त कर दिया। अध्यात्म थोड़ा टच करो, स्पर्श करो। एक कालिया नांग कौन है? एक काली नांग अपना मन है। क्या है काली नांग? सुनना ध्यान से, काली नांग आपका मन है। मन रूपी कालिया कहां रहता है? कहा भैया वृंदावन के अंदर, ध्यान देना, वृंदावन के अंदर यमुना के तट पर एक बहुत बड़ा हृदय। ये शरीर वृंदावन है, ध्यान देना अध्यात्म, ये शरीर वृंदावन है। शरीर रूपी वृंदावन के अंदर एक हृदय है। क्या है? हृदय है। न्याय दर्शन में आया है कि ये मन कहां रहता है? बोले पुरीतत नारी में। पुरीतत नाम की नाड़ी है, उसके अंदर मन रहता है, तो कहा यही हृदय है। इस हृदय के अंदर पुरीतत नाम की नारी में, नाड़ी में मन रहता है, तो कहा यही तो हृदय है, उसमें एक काली नाग रहता है। इस कालिया नाग को मारने के लिए भगवान श्याम सुंदर आते हैं और भगवान उसमें कूद करके मार देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। कालिया नाग की भी मैंने आपको संक्षेप कथा सुनाई। अब भैया मेरा बेटा एक भजन काली नाग पर अतिशीघ्र।
अरे काली देह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो पारो सो कन्हैया।
ग्वाल सब सखा संग में,
ग्वाल वाल सब सखा संग में,
ग्वाल वाल सब सखा संग,
अरे के दिखो खेल रचायो री मेरो पारो सो कन्हैया,
यानि के दिखो खेल रचायो री मेरो पारो सो।
काहे गिरे पट गेंद बनाई,
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 काहे गोरे डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया काली, अरे रेशम की पट्टी गेंद बनाई,
रेशम की पट्टी गेंद बनाई,
अरे रेशम की पट्टी गेंद बनाई,
रेशम की पट्टी गेंद बनाई,
चंदन कोरे डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया काली,
चंदन को बल्ला लायो री मेरो छोटो सो मेरो गोपाल जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय
गोपाल कृष्ण भगवान
राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं, राजन परीक्षित जिंदगी में सबसे बड़ा घातक आदमी का अहंकार है, अहंकार है, अहंकार से बचिए, अहंकार आदमी को गर्त में गिरा देता है, की हुई समस्त साधनों को खा जाता है, उपासनाओं को ध्वस्त कर देता है, उस स्तर पर बैठे हैं वो पतित बना देता है। अहंकार से बचना चाहिए, अहंकार से बचो। ये बात रामायण में भी कही है गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी भी कहते हैं और रामायण भी कहती है और गीता भी कहती है। सुनो ध्यान से, रामायण में बतला रहे हैं कि कियो करायो सब गयो, कियो करायो सब गयो, अरे जब आयो अभिमान। स्पष्ट सभी शास्त्र कहते हैं, मानसकार कहते हैं, अरे संस्कृत मूल, अरे संस्कृत सूल अमूल प्रदनाना, अरे संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, और सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक दायक अभिमाना, अभिमान से बचो। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव किसको अहंकार आया? आप कथा सुना रहे हैं, किसी अहंकारी का नाम लेकर उसके बारे में जरा मुझे थोड़ा विस्तार करके बतलाने की कृपा करें, उस अहंकारी का नाम क्या है? परीक्षित महाराज को उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित यदि आप उसका नाम जानना चाहते हो तो उसका नाम इंद्र है। इंद्र को बहुत अहम है, बहुत बड़ा अहंकार है अपने पद का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने स्वर्ग का, हर चीज का उसके अंदर अहंकार है। और भगवान का संकल्प है, यदि मेरी ओर कोई बढ़ता है, मेरा बन जाता है, तो मैं उसके अंदर अहंकार को रहने देता नहीं, उसके अहंकार को निकाल के फेंक देता हूं। प्रण हमार सेवक हितकारी, हमारा प्रण है, मैं सेवक का हितैषी हूं, इसलिए उसके अंदर अहम को रहने नहीं देता हूं। श्री भगवान हमें इस कथा को थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा करें। सुखदेव जी ने ऐसा से जब निवेदन किया परीक्षित महाराज ने, सुखदेव जी परीक्षित का निवेदन सुनकर के थोड़ा विस्तार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी सुनिए आप भी विस्तार को। सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता, भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् निवसत् गोपान् इन्द्र यज्ञ कृतोद्यमान्। यज्ञ इन्द्र कृतोद्यमान्, बलदेव और कृष्ण दोनों नंद बाबा के पास में गए। भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता, बलदेव ने संयुता, भगवान और बलदेव संयुता दोनों इकट्ठे होकर के पहुंचे। बाबा, ओ बाबा, ये पूड़ियां बन रही हैं, ये लड्डू बन रहे हैं, ये कचौड़ियां बन रही हैं, ये तमाम प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं, आज हमारे यहां भी व्यंजन तैयार हो रहे हैं, तैयार रहना। बड़े बड़े व्यंजन तैयार किए गए। महाराज व्यंजन कैसे, किस लिए, किस हेतु से, हमको थोड़ी कृपा करो बतलाओ ये किस लिए बना रहे हो। प्रश्न किया, अरे कथ्यताम, कथ्यताम में पिता, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागता, किम फलम कस्तच उद्देशेन कच्चबा शादते मखा, किम फलम, इससे क्या फल मिलेगा, किम फलम कस्य उद्देशेन, इसका क्या उद्देश्य है, इस यज्ञ का ये जो तैयारी कराई जा रही है इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या फल मिलेगा। कथताम मे पिता, है मेरे पिताजी आप बतलाने की कृपा करें। केन वा साधते मखा, मखा यज्ञम, मखा यज्ञम एक किस लिए करा रहे हैं आप इंद्र की, हेतु क्या है, कारण क्या है। नंद बाबा ने उत्तर दिया, सुनो क्या उत्तर दिया। नंद बाबा बोले बेटा कन्हैया, अरे लाला कन्हैया, मेरे प्यारे बेटे बलराम सुनो ध्यान से, अरे मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, अरे परजन्यो भगवान इंद्रो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्य आत्ममूर्तया तेपि बरसंति भूतानाम, तेपि बरसंति भूतानाम प्राणिनाम जीवनम पया, प्राणी नाम जीवनम पया। अरे भाई मेरे कन्हैया, परजन्यो भगवान इंद्रो, ये जो परजन्य बरसता है, पानी बरसता है, ये जो मेघ बरसता है, परजन्यो ये मेघ कैसे बरसते हैं, ये पानी कैसे गिरता है, इंद्रो इंद्र कृपा करता है, इंद्र की इच्छा से ये मेघ जो है, मेघस्य तस्य आत्ममूर्तया, ये उसी का तो स्वरूप है, ये इंद्र का ही स्वरूप तो मेघ है, जब वो चाहता है। तेपि बरसंति भूतानाम, तब वो बरसते हैं मेघ, और उससे क्या होता है, प्राणिनाम जीवनम पया, मेघ बरसते हैं, वर्षा होती है, अन्न उपजता है, ये सारी दुनिया खाती उससे जीवित रहती है। अच्छा पिताजी ये बात है, हमको तो नहीं मालूम था। कन्हैया क्या बोले, हमको तो नहीं मालूम था कि इंद्र को खिलाओ पिलाओ तो इंद्र वर्षा करेगा, और नहीं खिलाओ पिलाओ तो वर्षा रोक देगा। पिताजी सुनो ध्यान से, एक बात शिक्षा लो इससे। नंद बाबा ने ऐसा कहा तो कन्हैया ने अपना सुझाव दिया, क्या दिया सुझाव, मानो
छोटे बच्चे का भी सुझाव मानना चाहिए यदि अच्छी बात कहता है।
क्या समझे? डांट मत दो तो क्या जानता है, चल कल का छोकरा बहुत ज्ञान बगाड़ता है, बहुत ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करता, तू क्या जाने। ऐसा कभी बच्चे को नहीं बोला। नंद बाबा नहीं बोले, नंद बाबा मैया यशोदा भी ऐसा नहीं बोली। हाँ काना काना बोलो 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 कन्हैया, क्या कहना चाहते हो। घर में कोई छोटा भी यदि कोई अच्छी बात कहता है, अरे सासू कहीं तुम्हारी बहू अच्छी बात कहे तो मान लो। कल की बच्ची आई हमको ज्ञान दे रही है, तेरे को मालूम सफेद बाल हो गए संभालते संभालते, तू क्या जाने, बैठी रही चुपचाप। ना 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 बिल्कुल नहीं। नंद बाबा बोले, बोलिए कृष्ण तुम क्या कहना चाहते हो मुझे बतलाओ। पिताजी मेरे सुनो, ध्यान से सुनना पिताजी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी कम अच्छी बात नहीं कहूंगा। अरे पिताजी कर्मणो जायते जंतु और कर्मणैव प्रविलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। पिताजी तुम बोलते हो सुख दुख इंद्र देता है, इंद्र वर्षा करता है, उसी से एक जंतु जीते पलते पुष्टे हैं, वही सब कुछ है। सुख दुख उसके हाथ में है, जीना मरना उसके हाथ में है। पिताजी जीना मरना कंस के हाथ में नहीं है, इंद्र के हाथ में नहीं है। जिलाना मारना इंद्र के हाथ में नहीं है, जीवन इंद्र के हाथ में नहीं है। अरे शत्रु मित्रम उदासीनो, शत्रु मित्र उदासीनो कर्मैव गृहीशुरा। अरे ये हर इंसान अपने अपने कर्म से पुष्पित पल्लवित होता है, खाता है पीता है बड़ा होता है, जो कुछ होता अपने कर्म से होता है। पिताजी कितने गरीब हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते जो फुटपाथों पर से होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सुनना ध्यान से, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जन्म लेते हैं एक घूंट दूध पीने को नहीं मिलता है, तड़प तड़प के प्राणों को छोड़ देते हैं। वही भी लोग होते हैं फुटपाथों पे जन्म लेते हैं, प्लेटफार्म पर जन्म लेते हैं, इस चौपाटी पे जन्म लेते हैं, लेकिन दूध पीने को नहीं मिलता, तड़प के छोड़ा के बेचारे मर जाते हैं, मर जाते हैं। पिताजी ये इंद्र नहीं मार रहा है, इंद्र नहीं मार रहा है। शत्रु मित्र उदासीनो, अरे शत्रु मित्र उदासीनो सुकर्म सूत्रई गृत तो ही लोका, सुकर्म सूत्रई उनका अपना ही तो कर्म है जो उनको इस स्थिति में परिणत कर देता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। पिताजी इसमें इंद्र का, इसमें इंद्र का कोई मतलब नहीं है। इंद्र मुझे रोटी नहीं देता है, हमें भोजन नहीं देता है, हमें श्वास नहीं देता, हमें जल नहीं देता है, हमको भूमि नहीं देता है। हम लोग अपने ही द्वारा सब कुछ खा रहे पी रहे, हमारा अपना कर्म है, फुटपाथ पे पड़े उसका कर्म है। ध्यान देना, एक ही क्षण में एक ही समय में, सुनना बात को ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण, सुनना ध्यान से राजेश भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे एक ही घड़ी में, एक ही मुहूर्त में, एक ही पल में एक बालक टाटा बिरला के घर में पैदा हुआ है। वही मुहूर्त वही पल है वही घड़ी है वही क्षण है, और एक बालक फुटपाथ पे पैदा हुआ है। वही राशि है, वही घड़ी है, वही पल है, ज्योतिष के हिसाब से कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन जब बिरला के घर में टाटा के घर में लड़का उसी घड़ी में पैदा हुआ तो उसके शहनाई बजी, जन्म पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और एक गरीब के घर में, सुनो मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे, उसी क्षण में
एक फुटपाथ पर बालक पैदा हुआ और बेचारा एक घूर दूध के बिना तड़प-तड़प के मर गया। उसने मरते ही कौन सा पाप कर दिया, उसने जन्मते कौन सा पाप कर दिया फुटपाथ वाले ने, और बिरला के घर पैदा हुआ उसने कौन सा जन्मते ही पुण्य कर दिया, जन्मते ही उसने कौन सा पुण्य किया, जन्मते उसने कौन सा पाप कर दिया, जन्मते ही उसको एक घूंट पानी, एक घूंट जल, एक घूंट दूध नहीं मिल रहा है, तड़प तड़प के दूध के बिना बेचारा मरने जा रहा है, मर रहा है। ये क्या स्थिति है, ये क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं नंद बाबा को, अरे बाबा नंद बताओ मेरे को, हे नंद बाबा मेरे को समझाओ ये क्या है। फुटपाथ पर पैदा हुआ बालक दूध के बिना तड़प के मर रहा है, अरे उसने जन्मते ही कौन सा पाप कर दिया है, और टाटा बिरला के घर में पैदा हुआ बालक लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं, नाच गान हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, भाई उसने कौन सा पुण्य कर दिया जन्मते, न उसने जन्मते पुण्य किया है न जन्मते उसने पाप किया है, तो फिर ये फल, फिर ये परिणाम क्या है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। भगवान कृष्ण बोले सुकर्म सूत्रई, उसका भी अपना कर्म है और उसका भी अपना कर्म है, दोनों का अपना कर्म है। बहुत सुंदर बात। अरे पूरब की कमाई तुमने अब के बैठ खाई है, और आगे की खेप तूने कछू ना बनाई है। ये हम जो कारों में घूम रहे हैं ना, सुना ध्यान से, हम जो कारों में घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अट्टालिकाओं के बीच में रह रहे हैं, ऐश्वर्यों को भोग रहे हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सावधानों के सुनना, सतर्क होके मेरी बात को सुनना, मत भूल में रहना कि मेरी मेहनत है, मत कहना कि मेरा परिश्रम है, मैं मेहनत करता हूं। हमारा एक भक्त चंडीगढ़ में एडवोकेट, बहुत बड़ी कोठी बनाई, मुझे ले गया, कहा गुरुजी उस कमरे में चलो, उस कमरे में दुनिया भर घुमाता रहा, लान में बैठा, गुरुजी ये आपका शिष्य बड़ा मेहनती, इसने बड़ी मेहनत की जिंदगी में, बड़ा मेहनत की, गुरुजी अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। मैंने कहा बेटा तू भूल में है, मुझे ये बतला कि जब तू स्कूल में पढ़ने गया था, जूने ला किया था, तेरे कितने साथी थे? बहुत साथी थे। सभी कोठी वाले बन गए क्या? सभी कारों वाले बन गए क्या? सभी अरबपति बन गए? नहीं महाराज, कई तो धक्के खा रहे हैं। तो उनका मेहनत कम की थी? उन्होंने कहा मेहनत कम की थी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन पे तो कुछ नहीं तेरी तरह। अरे बेटा मत सोच कि महाराज मेरी मेहनत है, गुरुजी मेरी मेहनत है, मेरा परिश्रम है। ए बेटा तेरा परिश्रम नहीं है, तूने पहले जो किया था, तूने जो पहले दान दिया था, सुन लेना ध्यान से, तुमने जो पूर्व जन्म में दान दिया था, शुभ कर्म किया था, सदकर्म दिया था, दोनों हाथों से उलीचा था, संतों को दिया था, गरीबों को दिया था, स्कूलों में दिया था, मठ मंदिरों में दिया था, गरीबों को दिया, गौशाला में दिया। आज मैं गौशाला में गया, बहुत अच्छा लगा, हमारे प्रेमपुरी आश्रम का गौशाला देख के गदगद हो गया, मेरा चित्त हर्षित हो गया, बड़ी बड़ी प्यारी भा गाय है, बहुत अच्छा लगा। सुना सभी में जो हम देते हैं, सुनना ध्यान, अनंत रूपाए कल्पिते, वो अनंत गुना हो करके अगले जन्म में, सुनना मेरी बात को ध्यान से, पिछले जन्म में तुमने जो किया है, भगवान बोले हे बाबा नंद, जो आदमी पिछले जन्म में करता है, पूर्व के पिछले जन्मों में जो जो करता है वो संग्रहित होता रहता है, अगला जन्म उसको मिलता है, उस किए हुए कर्म का फल उसको भोगने पड़ता है, वही तो फल कार कोठी बंगला के रूप में उसको मिलता है। इंद्र नहीं देता, इंद्र नहीं देता, क्यों भ्रम में आप जी रहे हो पिताजी, भ्रम में क्यों जी रहे हो? सुकर्म सूत्रई, अरे ग्रस्त तो ही लोग, हर आदमी
अपने कर्म किए हुए को ही भोगता है। आज ईश्वर ने आपको गाड़ियां दी हैं, वैभव दिया है, सुख संपत्ति दी है, बहुत कुछ दिया। हम आपको प्रेरणा देंगे कि अब फिर ऐसा करो जो आगे चल करके तुमसे इससे भी अधिक मिले, अधिक मिले, अधिक मिले, अधिक मिले। ध्यान देना, कोई भी जज बनकर के चौकीदार बनना चाहता है, चपरासी बनना चाहता है, जज कभी नहीं कहेगा कि हम चपरासी बन जाएं, चपरासी, क्योंकि जज से चपरासी छोटा होता है। जज नहीं चाहता हम चपरासी बन जाएं, तो क्या हम चाहेंगे कि अरबपति से करोड़पति से हम हजारपति बन जाएं? ऐसा काम कभी ना करो। बहुत दिया, बहुत ऊंचा बनाया, फिर दे इससे भी ऊंचा बनूं, ऐसी भावना रखो। भगवान कृष्ण ने समझाया, ये मत समझना, ये मत सोचना, इतना ही दायित्व एक साधु का है। ध्यान देना, सर्वांगीण व्याख्या, यही दायित्व साधु का है, यही कर्तव्य ब्राह्मण का है, सभी का, क्यों हम सभी ने आगे जाकर के लेना है। ब्राह्मण का दायित्व है दान ले दान दे, साधु का काम है दान ले दान दे, केवल गृहस्थी का नहीं, और हम लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों के आश्रमों में आइए तो अनुच्छेद चलते हैं, हम लोगों ने विद्यालय खोले, हमने चर्चा की थी गिरीश भाई से और भैया से, हमारा एक विद्यालय चल रहा है, और इतना गरीब इलाका है, इतना गरीब इलाका है कि वहां के लोगों का, आदिवासी टाइप के लोग हैं, उनके कच्चे बनियान भी फटे होते हैं, कच्चे बनियान भी फटे होते हैं, ऐसे लोग वहां रहते हैं, एकदम गरीब इलाका है। हम कोई योजना बना के नहीं गए थे वहां कि मैं विद्यालय बनाऊं, 90 बच्चों का एक स्कूल छोटा सा था, हमारी कथा चल रही थी, कथा पंडाल के सामने से भींगते हुए बच्चे अपनी किताबों को छाती से चिपकाए हुए भाग रहे थे। हमने पूछा ये क्या है, कहा महाराज एक ऊसर में स्कूल है, कुछ भी छाया नहीं है, बच्चे बेचारे परेशान होते, भींगते, धूप में तपते हैं, स्थिति खराब है। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से शिवपर्ण कथा करके आया हूं, कितना खर्चा आएगा इन बच्चों को टी शर्ट बनाने के लिए, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा महाराज, करीबन 80-90 हजार रुपए लगेगा। वो कथा का जो था दे दिया, वहां विद्यालय बन गया। क्या बन गया? क्या हम सोच के गए थे? सोच के नहीं गए थे। आज वो विद्यालय हाई सेकेंडरी स्कूल के रूप में स्थित है, वहां पर इतनी जगह नहीं कि जितने बच्चे हैं, 18 कमरे बने हुए हैं, टी शर्ट वो पड़ा हुआ है, 700 बच्चा पढ़ता है। इंटर की मान्यता प्राप्ति के लिए वहां 25 कमरे सरकार मांग कर रही है, साधु कहां से लाएगा? कथा प्रवचन ही तो करेगा, और क्या करेगा? हल तो चलाएगा नहीं, व्यापार तो करेगा नहीं। सुनिए, समझिए मेरी बात को, हमारा भी दायित्व है धर्म करना, शुभ कर्म करना, मेरा भी दायित्व है स्कूल बनाऊं, गौशाला चलाऊं, विद्यालय बनाऊं, शुभ कर्म करूं, सदकर्म करूं, अच्छे कर्म करूं। ब्राह्मण का भी कर्म है कि सदकर्म करे, शुभ कर्म करे, दान दे और दान ले। हमारे यहां कहा गया है साधु ब्राह्मण के लिए, अरे दान में से दान दे तीन लोक जीत ले, दान में से दान दे तीन लोक जीत ले। क्यों? कि भैया आपका दिया हुआ दान मेरे पास आया और हमारे पास आया, हमने यदि दे दिया तो तीन लोगों को जीत लिया, उसका फल कहां जाएगा? का भैया जो प्रेमपुरी में बैठे लोग उन्होंने दान दिया, उनके घरों पर उसका पुण्य और फल चला गया। अवधूत का चुनना पुण्य, अवधूत का चुनना पुण्य, जिसने दिया उसका चुन और पुण्य। सुनो ध्यान से, भगवान कृष्ण ने समझाया, अरे पिताजी आप क्या बात कर रहे हो, ये कर्म की बड़ी लीला है, इंद्र कुछ नहीं करता है, जो भी होता है वो कर्म के द्वारा होता है। फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति, इंद्र नहीं कुछ कर रहा है, उसका कर्म कर रहा है। कर्म सुधारो, पिताजी हमारी राय से इंद्र के लिए कुछ मत करो। एक जो तुमने तैयारी की है, इस भोजन तैयार कराया है, हमारी कमेटी ने भी बहुत कुछ कर रखा है, हमको सूचना मिली, बहुत मालटाल। सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। भगवान कृष्ण बोले कि ये जो भी कुछ है पिताजी, इसमें थोड़ा और बढ़ाओ, ये तो इंद्र के नाम का है, हमारे गिरिराज से हम लोगों का पालन पोषण हो रहा है, हमारे गिरिराज ही हमको जीवन दे रहे हैं, हमारे गांव में गिरिराज पर चुंगने जा रहे हैं, हमारा जीवन तो यही गिरिराज ही है, तो हमको गिरिराज की पूजा कर लिए। बाबा अभी तक इंद्र को तूने देखा नहीं? देखा, तुमको गिरिराज भगवान दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे, तब देखना। कितने साल हो गए पूजा करते, गिरिराज को कभी देखा नहीं, अब तुमको गिरिराज दिखाई पड़ेंगे, तुमसे तुमको मुस्की मारते हुए गिरिराज जी दिखाई पड़ेंगे। चलो, पकवान मिष्ठान तैयार हुए। क्या क्या तैयार किया बताऊं आपको? सुन लो एक मिनट। तैयार किया गया, बोले क्या क्या तैयार किया गया? बोले मुदगी दाल, अरे मुदगी दाल सुसाल तुअर तणी, मुदगी दाल सुसाल तुअर तणी, और नीका दूह पले पापड़ बड़ी कोड़ा बड़ी धीमड़ी। बड़े बड़े व्यंजन बने, 56 प्रकार के भोजन तैयार किए गए, लड़ियों में गाड़ियों में भर करके सभी लोग तैयार हुए। कन्हैया ने कहा इसका संचालन मैं करूंगा, गिरिराज तक जाने का हम व्यवस्था करेंगे। आगे ध्यान देना, वृद्ध लोगों को रखा, संतों को रखा उस शोभा यात्रा में। पहले संत हैं, फिर वृद्ध हैं, फिर मंडली है, फिर माताएं हैं, फिर बच्चे हैं। बड़ा सुंदर क्रम बनाया, सभी नाचते गाते गिरिराज जी पे पहुंच गए। वृंदावन में हरिलाल की, सभी गिरिराज में पहुंच गए। गिरिराज का सभी ने बहुत आनंद लिया, सभी ने गिरिराज को स्नान कराया। एक बार जल रहे गंगा का, थक गए, बोले हम तो थक गए। कन्हैया बोला कोई बात नहीं है, यहीं से जल प्रकट होगा। मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और सभी ने गिरिराज को अभिषेक कराया, स्नान कराया। स्नान कराकर बढ़िया सुंदर वस्त्रों से सजाया है, तिलक को किया है, जो जो लोग मिष्ठान पकवान लाए थे गिरिराज जी को भोग लगाया। गिरिराज जी को भोले बाबा को समाचार मिला कैलाश पर, आज गिरिराज पूजा है, आज गिरिराज पूजा है। हमारे प्रेमपुरी आश्रम में गिरिराज पूजा है। बंबई के लोगों ने सुना कि गिरिराज पूजा है, तो बंबई के लोग भागे, कैलाश से भोले बाबा दौड़े। हाँ, लिखा है, सुनो। भोले बाबा ने कहा हम भोग लगाएंगे गिरिराज जी को। क्या भोग लगाएं? सुनो ध्यान से, शंकर ने भी भोग लगाने की इच्छा प्रकट की और भैया मैया को संकेत किया, कुछ तैयार करो, पकोड़े बनाओ। हाँ, कुछ उन्होंने तैयार किया, यहां लिखा है, सुन लो क्या क्या तैयार किया। भोले बाबा तो मस्त है ना, थोड़ी थोड़ी बूटी डाल दी। हाँ, अरे धतूर भंगा विषपान बल्लवे, धतूर भंगा विषपान बिल्लबो, और हेमाधि पुत्री शहदा गणा ब्रदो। सब कुछ तैयार करके भोले बाबा ने झोलियों में भर लिया और भोले बाबा अपने गणों के शहद नंदी चुपे बैठे और गिरिराज जी में आ गए। भोले जी भी आए, आज भोले जी भी यहाँ पधार रहे, तुमको दिख नहीं रहे, पर भोले बाबा भी आ गए। बंबई के बहुत से लोग भाग्यशाली पहुंच गए। गिरिराज जी का पूजन शुरू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी लोगों की थालियों में पकवान मिष्ठान है, नाना प्रकार के व्यंजन हैं। भोले बाबा भी अपनी थाली लेके खड़े हुए हैं। सभी भक्तों ने गिरिराज जी को अपने हाथ से खिलाया। बोलो गिरिराज भगवान की। सभी ने गिरिराज भगवान को भोजन कराया, भोग कराया। गिरिराज जी महाराज बड़े प्रेम से छक रहे हैं, प्रेम से भोग को आरोग रहे हैं। बाबा नंद से कहा, बाबा तुमने कभी इंद्र को नहीं देखा? देखो ध्यान से देखना, ऊपर ऊपर देखना, ओ बाबा ऊपर देख तो, बाबा बाबा ऊपर देखना, देखो वो गिरिराजी बैठे, वो गिरिराजी। नहीं देखे कि नहीं दिखे? बोले कन्हैया दिख तो नहीं रहे हैं, लगता है आंखों में कुछ रोशनी कम हो गई। अरे नहीं नहीं, ध्यान से देखो, वो उंगली की तरफ देखना। कन्हैया ने एक रूप धारण किया, चटकूद के ऊपर पहुंच गया गिरिराज के। देखो वो सामने बैठे गिरिराज जी देखे बोले हाँ हाँ दिखे तो सही है, मुकुट भी दिख रहा है, मुकुट में हीरा लगा वो भी दिख रहा है, क्या सुंदर मुकुट है, क्या गिरिराज के कपोल हैं, क्या गिरिराज की ग्रीवा है, क्या गिरिराज के स्कंद है, बड़ा प्यारा रूप है गिरिराज जी का। कन्हैया तेरा गिरिराज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा भोग लगाओ, पहले पूजा तो कर लूं तब भोग लगाऊं, भोग तो बाद में लगता है। सो गिरिराज जी महाराज को माला पहनाई, कुमकुम ली और लेकर के जब गिरिराज जी को लगाई तो नंद बाबा तो वृद्ध हैं, जब थोड़ा हाथ हिल रहा था सो इधर की तरफ इधर चली गई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इधर की जगह इधर आई कुमकुम तो गिरिराज जी की नाक में चली गई, गिरिराज जी को छींक आई छी। अच्छा हाँ बाबा ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरे गिरिराज साक्षात हैं, जो कि इनको छींक आई। गिरिराज जी को बड़े प्रेम से खिलाया है, नंद बाबा ने भोग लगाया है, सभी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया, बड़े प्रेम से गिरिराज भगवान ने आरोगा, सभी ने परिक्रमा की, वापस लौट आए। संक्षेप, वापस लौट आए वृंदावन बिहारी लाल की, इंद्र को पता लगा, इंद्र ने सुना है, इंद्र को गुस्सा आई है, शाम तक मेरे को भेजा है जाओ ऐसी वर्षा करो, वृत को बहा दो। गुस्सा में आया, शाम तक मेघ आया, ऐसी तूफान तूफानी हवा चल रही है, वर्षा हुई, कन्हैया के तरफ सब भागे, अरे कन्हैया तेरे कहने पर पूजा की थी वो हम नाच कर देगा, अरे घबराओ नहीं सब आ जाओ मेरे साथ गिरिराज जी के पास चलते हैं। सारे के सारे गिरिराज जी के नीचे बैठ के, भैया जलाने लगा है डूब जाऊंगा, अरे नहीं डूबने की है, डूबोगे नहीं। शेष को आदेश दिया, आस पास से घेर लिया, चक्र से कहा वर्षा हो रही है सुखाओ, चक्र वर्षा को सुखाता है। शेष ने चौकड़ी मारी है, एक एक भी बूंद जल नहीं आ रहा है। कन्हैया बोला देखो भैया लाठी तो मैंने लगा रखी है, लकड़ी तो लगा रखी है, हम तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, मेरे ग्वाल बालों थोड़ा तुम भी लगाओ। सब ग्वाल बालों ने अपनी भी लकड़ियां लगाई है, एक भाव आ रहा है नहीं उधर नहीं जाऊंगा। जशोदा मैया ने सोचा अरे मेरे लाला लाला मेरा छोटा है, उंगली भी छोटी है, कितना वजन होगा। सो मैया बोली लाला थोड़ा आराम कर ले, मैया बोली आराम, क्योंकि बेटा मां जो होती बेटे पर बड़ा दुलार होता। कन्हैया ने थोड़ा यूं किया तो पर्वत, मैया यदि मैंने यूं किया तो सीताराम हो जाएंगे, मैया मुझे खड़ा रहने दे। ऐसा गिरिराज को धारण किया हुआ है, इंद्र थक गया, सभी सुरक्षित हैं। अंत में वर्षा बंद हो गई, ग्वाल बालों से कहा जाओ अपने घरों में सभी आराम से। इंद्र का मान का मर्दन हुआ है, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ के आया है, साथ में कामधेनु को लाया है, कामधेनु से कन्हैया का अभिषेक किया है और माफी मांगा हमसे भूल हो गई हमसे गलती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अब भाव को रहने दो, भाव बहुत लंबा पड़ जाएगा हमको, वो भाव बहुत लंबा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज भगवान की। शोभैया गिरिराज की सभी ने पूजा की है, अगले जन्म में एक सखी वहां रह गई, वही आकर के कलयुग में मीरा बनी, ऐसा यहाँ पर संक्षेप से मैंने अब अंत में आपको बताया गिरिराज की। एक गिरिराज जी का भजन बड़े प्यार से सभी बोलेंगे, सभी मिलकर उसके बाद गिरिराज जी का पूजन होगा, सभी लोग बोलो बोलिए।
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है
गोबर धन महाराज,
गोबर धन महाराज हमारे प्यारे गोबर धन महाराज,
गोबर धन महाराज हमारे प्रभु गोबर धन महाराज,
तेरी
से प्यारी है गोवर्धन महाराज। घाटी पे दधी को दान
करो, दान घाटी पे दधी को दान,
दान घाटी पे दधी को दान,
मानसी गंगा को स्नान,
मानसी गंगा को स्नान,
मेरे तकले पर कोरी ध्यान धरो,
श्री जी को ध्यान
करो, पर तैयारी है गोबर धन महाराज, चलता तेरी तीन लोक से
आई है गोबर धन महाराज।
गोवर्धन महाराज।
राधा कुंडी अपार,
कृष्ण और राधा कुंडी अपार,
यहाँ पर अभी चल नृत्य बिहार,
यहाँ पर अभी चल नृत्य बिहार,
मोरी और तोता रहे अपार,
मोरी और तोता रहे अपार,
लगे मुड़िया मेला भारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी,
लोक से नारी है गोवर्धन महाराज,
अरे गोवर्धन महाराज हमारी प्यारी गोवर्धन सरकार,
अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन भगवान,
सदा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज
चटातरी, लोक से नारी है गोवर्धन महाराज,
जय हो
गोवर्धन महाराज,
बोल श्री गोवर्धन महाराज,
बोल श्री गोवर्धन महाराज,
ये पूरण करते सबकी काज,
ये पूरण करते सबकी काज,
समारे जन अपने की लाज,
समारे भक्ति अपने की लाज,
किशोरी चरणन की बलहारी है गोवर्धन महाराज छता तेरी, जय हो
लोक से नारी है गोवर्धन महाराज,
अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज,
अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज,
छता तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज,
छता तेरी लोक से नारी है गोवर्धन महाराज,
गोवर्धन नाथ भगवान की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर
तेरी आरती गाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
तेरे शीश पे सो है
प्यारी बंसी मेरु मन मोहे,
प्यारी बंसी मेरु मन मोहे,
या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, हे गिरधर
तेरी आरती
गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया तारी,
जिसने सारी दुनिया तारी,
चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, हे गिरधर
तेरी आरती गाऊं,
प्यासी दास की नाथी आप हो,
प्यासी दास के नाथी आप हो,
सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ही हो,
सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपकी हो।
हरि चरणों पे मैं तू बलि बलि जाऊं,
हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो।
के मैं तो दर्शन पाऊं,
हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं।
मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है,
मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। गिरिधर तेरी आरती गाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।